सबसे महिमामय पिता, आज रात हम बहुत ही खुश हैं यह जानकर कि हम हमारे अमर हार जीवन के अंदर हैं। हमारे परमेश्वर का जीवन आग की जीभ के द्वारा अलग हुआ और उनमें से प्रत्येक पर आ बैठा और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य जुबान में बोलना आरंभ किया जैसे आत्मा ने उन्हें उच्चारण को दिया। हे पिता, हम आपको कैसे धन्यवाद करें कि आपने कलीसिया के बीच अपने आप को विभाजित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रभु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। किस तरह स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करता है। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे अब नहीं देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम्हारे अंदर रहूंगा, दुनिया के अंत तक, वहाँ आगे हर एक युग में से होते हुए तुम यहाँ होंगे, कल, आज और युगानुयुग हमेशा के लिए। और हम आपको आपके कार्यों के द्वारा जानते हैं जो आप प्रदर्शन करते हो। यह चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। प्रभु, सारे युगों की चरम अवस्था को देखते हुए समय समाप्ति पर है, अनंतता अंदर आने पर है। हम बहुत ही खुश हैं यह जानकर कि हम आज उस बचे हुओं में से रह रहे हैं। हमारे जीवनों को देखते हुए और देखते हुए कि किस तरह के उद्देश्य हमारे पास हैं, हमारे पास जो इरादे हैं, देखते हुए कि पवित्र आत्मा ने उसे अधिकार में ले लिया है। परमेश्वर होने पाए हर एक व्यक्ति जो आज रात दैविक उपस्थिति में है, इन कलीसिया युगों को जान जाए जिसमें हम रह रहे हैं और तुरंत ही दौड़कर प्रभु यीशु के पास जाएं, क्योंकि यह बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रभु का नाम एक शक्तिशाली गढ़ है, धर्मीजन इसके अंदर दौड़कर जाते हैं और सुरक्षित हैं। हे परमेश्वर, आज रात आकर और हमारे अस्तित्व को अभिषेक करें। प्रभु, जो भटक रहे हैं उन्हें लेकर आए। हे प्रभु, जो बहुत ही गड़बड़ी में हैं, उन बेचारी भेड़ों को देखें। प्रभु, वे नहीं जानते कि क्या विश्वास करना है। वहाँ चरवाहे हर कहीं से बुला रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वे उस झुंड के महान चरवाहे को सुने जो प्रभु यीशु है। उसका महान आत्मा आज रात बोले कहते हुए, मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबत को दूंगा, वो विश्राम जो तुम्हें तुम्हारे अनंत मंजिल के लिए मोहर बंद करता है। धरती के ऊपर डामाडोल नहीं होना है, क्योंकि हम अब समय को निकलते हुए देखते हैं। इसे प्रदान करें पिता, प्रचारक के द्वारा बात करें, वे जो सुनते हैं वे कानों के जरिए से ध्यान से सुने, क्योंकि हम सभी सुन रहे हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। अब आज रात हम दूसरे कलीसिया युग का अध्ययन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बातों को लिख रहे हैं और इत्यादि, और यही कारण है मैं हर समय इसे स्पष्ट बनाना चाहता हूँ। अब दूसरे कलीसिया युग को स्मुरना कलीसिया युग कहा जाता था, और इसने स्थान को लिया जो स्मुरना युग है, जो इफिशियंस कलीसिया के जाने के समय पर ही जारी किया गया था। इफिशियंस युग 55 एडी से 170 तक था। स्मुरना युग 170 में आया और 312 तक चलता है। यह कलीसिया एक सताई हुई कलीसिया है, वो एक जो शहीदों के ताज को पहनती है, जो एक क्लेश की कलीसिया है, और परमेश्वर की इसके लिए प्रतिज्ञा है इसमें कि एक चुनी हुई कलीसिया, इसे एक जीवन के मुकुट को दिया जाना था। प्रत्येक कलीसिया के पास एक तारा था जो परमेश्वर के हाथ में था, जिसने उस कलीसिया युग में उस संदेश वाहक को प्रतिनिधित्व किया। सबसे अच्छा जिसे मैं सोच सकता था जो इफिशियंस कलीसिया के युग में का संदेश वाहक था, क्योंकि बाइबल यह नहीं बताती है कि वे कौन थे, पौलुस था, क्योंकि उसने इफिशियंस कलीसिया की स्थापना की थी और वह उस कलीसिया युग का सेवक था जिसने कलीसिया के लिए उजियाले को लाया, जिसे संत यूहन्ना ने इसे वहाँ से उठाया और फिर पॉलीक्रॉप और आगे पॉलीक्रॉप, मेरा मतलब उसके बाद। अब स्मुरना युग, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि मैं पता लगाने में सक्षम रहा हूँ जो इरेनियस था, और अब मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि मैंने बजाय पॉलीक्रॉप के इरेनियस को क्यों चुना। अब अधिकतर सभी धर्मशास्त्री को लगता है और बाइबल के शिक्षकों को कि पॉलीक्राप वो दूत था। पॉलीक्राप संत यूहन्ना का एक चेला था जो सच है, और पॉलीक्राप मोहरबंद वो शहीद हुआ था। उन्होंने सीधे उसके हृदय में चाकू से वार करके और उसे मार डाला। अब लेकिन वह एक महान व्यक्ति था, एक उल्लेखनीय व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, मधुर था, कोई संदेह नहीं, सबसे महान मसीही लोगों में से एक जो हमारे पास कभी रहे थे। और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके जीवन के विरोध में आप कह सको। वो कारण जिसके लिए मैंने इरेनियस को चुना, क्योंकि मेरा मानना है कि इरेनियस पॉलीक्राप की तुलना में वचनों के अधिक नजदीक था, क्योंकि पॉलीक्राप एक संगठन की स्थापना के रोमन विचार के प्रति एक तरह से झुक गया था, और इरेनियस मजबूती से इसके खिलाफ था। उसने पूरी तरह से इसकी निंदा की। और फिर जैसे हम सभी जानते हैं, वो बड़ा वाद विषय नीसियन परिषद पर आ रहा था। उन बड़े वाद विषयों में से एक था कि क्या परमेश्वर तीन था या परमेश्वर एक था, और इरेनियस ने पक्ष को लिया कि परमेश्वर परमेश्वर था, अब बस एक ही। मैं एंटी नीसियन फादर्स से शायद पढ़ सकता हूँ भाग एक पन्ना 412, बस कुछ हवाले के लिए, यदि आप इसे लिख कर रखना चाहते हैं तो एंटी नीसियन फादर्स भाग एक में से है, और पन्ना 12 पर। और यदि आप भाग को चाहते हैं तो यह भाग तीन का अंतिम हिस्सा है। आप पूरी बात को पढ़ सकते हैं, इसके बहुत से अध्याय हैं या बहुत से वाक्य हैं। अब मैं पढ़ना आरंभ करता हूँ ठीक अंत पर इसके 20वें 30वें पद पर। मैं यह सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका सिर्फ एक भाग। वे सारे अन्य हाव भाव इसी तरह से एक ही होने के शीर्षक को बाहर लाते हैं, और उसी अस्तित्व के, देखो वो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने उसे ऐसा कहा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसने कहा यह तो शीर्षक है ना ही नाम है, एक ही अस्तित्व के शीर्षक है। बिल्कुल ऐसा ही जो हम आज भी सिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए और उसके बाद में उपवाक्य अंग्रेजी में, सामर्थ का प्रभु, सभी का प्रभु पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे उच्च सृष्टिकर्ता, वो निर्माता, और इसी तरह से ये विभिन्न अस्तित्वों के उत्तराधिकारी के नाम और शीर्षक नहीं है, लेकिन एक ही, और वो वही है। आमीन। उस नाम के द्वारा जो एक परमेश्वर पिता है, जो वह जो सब इन बातों सबका प्रदान करने वाला, अस्तित्व के सारे अस्तित्व का कर्ता, इरेनियस का यह कहना है कि ये सभी शीर्षक एक नाम के अंदर मिल गए हैं, एक ही परमेश्वर के नीचे, और वे तो केवल शीर्षक हैं, जो कि वो क्या था, वो शारोन का गुलाब था, यही है जो वो था, यह एक शीर्षक है, वह भोर का तारा था, वह अल्फा था, वो ओमेगा था, यही वो शीर्षक है जो वो था, वह पिता था, वह पुत्र था, वह पवित्र आत्मा था। लेकिन वहाँ एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर, और उसका एक ही नाम है, और यही वो एक कारण है कि मैंने सोचा इरेनियस सही था यहाँ उसके निदान में या वचन के अनुवाद में। एक और बात जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ये इस किताब में पाया जाता है, हाउ डिड इट हैपन, और यह इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, और हाउ डिड इट हैपन जिसे आरसी हेजलटन के द्वारा लिखा गया, जो प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास है। और यहाँ पन्ना 180 पर इरेनियस के समय में आत्मिक दान जो एडी 177 से लेकर 202 तक है। अब मैं जिस कारण से मैं इसका हवाला दे रहा हूँ, यह टेप पर जा रहा है, आप देखते हैं, और इसे किताबों पर डाला जाएगा। यह इरेनियस के समय में था कि फ्रांस की अधिकतर प्रेरितों की कलीसिया थी जिसके पास पवित्र आत्मा के सारे दान थे, ऐसा उसके सिखाने से था। देखिए, इरेनियस के कलीसिया के सदस्य लियोन पर, यह लियोन है जो फ्रांस में है, वे अन्य भाषा के साथ बोले। किसी मृत व्यक्ति को जीवन में वापस आते देखना असामान्य बात नहीं थी। चंगाई का होना, चंगाई का होना हर एक दिन की घटना थी, जो सारे सुसमाचारक कलीसिया के हर जगह पर होती थी, जो इरेनियस जानता था कि कैसे सिखाना है। चमत्कार अक्सर होते रहते थे। सच में वे कलीसियाएं कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति के अद्भुत कार्य के प्रकटीकरण हुए बिना नहीं हुआ करती थी, या तो दर्शन के आधार पर प्रकृति के तत्वों की रोक एक चमत्कार में उस दिन के सुसमाचारक मसीहों को याद दिलाने के लिए कि वे उसके प्रिय चेले थे। लेकिन पहले के गुजरे हुए इतिहास में हम एक घटना भी नहीं बटोर सकते हैं कि पहले की रोमन कलीसिया में मृत जीवित हो गया। यही लोग हैं जिन्हें दोनों में दिलचस्पी नहीं थी, वे तो बस सच्चाई को बता रहे हैं। ये इतिहासकार है। यही कारण है कि मैं एरिनियस को सोचता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं उसके पास वही विश्वास था जो पौलुस और चेलों ने आगे सौंपा था। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह स्मुर्ना के कलीसिया का दूत था, क्योंकि वह उसके पास वही वचन की शिक्षाएं थी और परमेश्वर के वचन के आधार पर वही शिक्षाएं जो हर बार उसी चीज को उत्पन्न करेगी। यदि आप बस परमेश्वर के विधि को लेते हैं और इसे शब्द दर शब्द लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलीसिया जो चाहे कुछ भी कहे, केवल इसे उसी तरह से अनुसरण करें जिस तरह से इसे कहा गया था, यह उसी चीज को उत्पन्न करेगा, और यही एरेनियस ने किया। अब मुझे लगता है कि पॉलीक्रॉप एक भला मनुष्य था, समझ वाला, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह कलीसिया को संगठित करने के लिए बहुत झुक गया था और निकोलियन की तरह कर रहा था। वे कलीसिया को संगठित कर रहे थे और भाईचारे को एक साथ ला रहे थे, जो बौद्धिक रूप से सब सही दिखाई देता था। लेकिन आप देखते हैं, आत्मा बौद्धिक चीजों से बहुत ही आगे है। इतना तक आप यहाँ आत्मा पर ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे उच्च विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊपर हैं, यहोवा यो कहता है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से बहुत ऊपर हैं। इसलिए वहाँ पर केवल ऐसा करने का एक ही तरीका है, केवल उस पद चिन्हों के नक्शे के द्वारा उसके पीछे चले। यह सही है। अब हम सोच सकते हैं, यदि आप यहाँ से जा रहे होते थे, यदि मैं आज रात शिकागो जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और मैं एक दिशा बताने वाले यंत्र को लेता हूँ और मैं कहता हूँ, अब आओ देखें, शिकागो इस तरफ दिखा रहा है, तो ठीक है, मैं सीधे इस तरह से ले लूंगा, मैं जेफरसनविल से बाहर नहीं निकलूंगा, समझे। मुझे अपने लिए एक रास्ते के नक्शे को लेना होगा और वहाँ एक लगी हुई है रेखा खींची हुई है कि मैं 6 या 7 घंटे में शिकागो के लिए जा सकता हूँ मोटर गाड़ी से यात्रा करके, लेकिन मैं बस किसी भी रास्ते से काट कर नहीं जा सकता हूँ। हवाई जहाज किसी भी मार्ग से काट कर नहीं जा सकता है। उसके पास एक हवाई रेखा होती है या एक निश्चित ऊंचाई और चीजें होती है जिसमें उसे उड़ान भरना होता है। कुछ तो ठहराई हुई डिग्री होती है और उसे उसमें बने रहना होता है। वहाँ एक मार्ग बना हुआ है और परमेश्वर के पास एक मार्ग है। परमेश्वर के पास उसकी कलीसिया के लिए एक मार्ग है, उसके लोगों के लिए मार्ग है, और उसका कभी भी ऐसा इरादा नहीं था कि इसे पोप, कार्डिनल, आर्क बिशप या मुख्य प्रधान के द्वारा नियंत्रित किया जाए। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर की कलीसिया का शिक्षक है, ताकि इसे ऊपर लाए, और सारी पवित्रता कार्डिनल या याजक के लिए नहीं जाती है। उसे कलीसिया में पवित्र व्यक्ति या कुछ भी बनाने के लिए साधारण जन के पास उतना ही अधिकार है, उतना ही पवित्र आत्मा के लिए अधिकार है, जैसे किसी भी प्रचारक का होता है, पास्टर, डीकन, खजांची, जो कोई भी और है, जन साधारण का। और वो कारण है कि वे इसे निकोलियन कहते हैं, जैसा कि हमने कल रात निकोलियन को लिया था, हमने शब्द को तोड़ दिया और इसे यूनानी से लिया, और नी कु मतलब निकु, जिसका अर्थ होता है विजय को पाना या उखाड़ फेंकना। क्या नी कु जन साधारण पर जय को पाना और उन्हें मनुष्य के द्वारा आज्ञा के इसे उखाड़ फेंकना। पादरीगण जो उन्हें सिखाएंगे और वे मिलकर उनके अपने निर्णय को लेंगे। सो ऐसे ही निसियन परिषद को आयोजित किया गया था, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ मिल गए और उन्होंने नीसियन परिषद में एक आदेश को जारी किया। इस पर बहुत अधिक बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यही है जो गुरुवार की रात नीसियन परिषद के लिए है, लेकिन यही है जहां रोमन कैथोलिक कलीसिया का गठन किया गया था। लोगों के एक झुंड से बाहर जो संत पॉलुस और एरेनियस और संत मार्टिन और इत्यादि आगे परिवर्तित हुए थे, वे परिवर्तित हुए मसीही थे, पागानवास से मसीहत में परिवर्तित हुए, लेकिन वे कलीसिया को एक पुराने नियम की शैली की सेवकाई में पीछे खींचना चाहते थे, जैसे कि महायाजकों का होना और प्रेरिताई का उत्तराधिकारी, जैसे एक पोप से दूसरा पोप, एक और दूसरा पोप। यदि हम पीछे इस बाइबल में से होते हुए जा सकते हैं, तो आप यह पाएंगे कि यही बस वास्तव में सच्चाई है कि कैसे परमेश्वर ने आरंभ से ही इस बात को दोषी ठहराया और पिछली रात के कलीसिया युग ने कहा, मैं इससे घृणा करता हूँ, और वैसा ही कलीसिया ने किया। परमेश्वर का कभी भी ऐसा इरादा नहीं था कि कलीसिया को मनुष्य के द्वारा चलाया जाए। परमेश्वर उसकी कलीसिया को चलाता है और वह इसे आत्मा के दानों के जरिए से चलाता है। कलीसिया में आत्मा के दान होते हैं जिससे कि आत्मा का सुधार करे। उसके पास उसकी कलीसिया में 5 सेवकाई के कार्य स्थान होते हैं। उनमें से सबसे पहले प्रेरित है या मिशनरियां हैं। मिशनरी में वहाँ जो सर्वोच्च बुलावट है वो प्रेरित की है। वो शब्द मिशनरी का मतलब एक भेजा हुआ, प्रेरित का अर्थ है एक भेजा हुआ। उन्होंने हमेशा ही मिशनरी कहलवाना क्यों चुना मैं नहीं जानता, लेकिन वे प्रेरित है। ठीक है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सुसमाचारक, पास्टर, अब यही परमेश्वर के उसकी कलीसिया के लिए चुने हुए कार्य स्थान है। फिर प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में वहाँ पर 9 आत्मिक दान होते हैं जो लोगों के बीच आते हैं, जो है ज्ञान, बुद्धि, चंगाई के दान, अद्भुत कार्य को करना, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा का अनुवाद करना, और ये सभी चीजें प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में जाती है। और कलीसिया में हर व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत सेवकाई होती है, और यह व्यक्तिगत सेवकाई जो बाकी की सेवकाई के साथ साथ जाती है यीशु मसीह के देह की उन्नति के लिए। और ना ही कभी, अब इसे याद रखें कि यहाँ मैं आज रात इन रेखाओं को यहाँ चित्रित करूँगा, पहली कलीसिया इफिसुस, स्मुर्ना, पिर्गमुन, थुआतीरा, सर्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदिकिया। अब याद रखें कि जैसे ये आगे बढ़ता है, इस कलीसिया के पास आत्मा की परिपूर्णता थी, लेकिन कलीसिया युग के अंत में हम पाते हैं कि इसे बाहर किया गया था। अगली कलीसिया युग ने थोड़ा और बाहर किया, थोड़ा और इस एक तक। वहाँ बस एक जरा सा छोटा सूक्ष्म बिंदु है, तुम्हारे पास कुछ बातें हैं, उसने कहा। और जब हम उस थुआतीरा कलीसिया युग के लिए पहुँचते हैं, अब उसके आने के बाद परमेश्वर ने मार्टिन लूथर नाम से एक जर्मन को खड़ा किया, जिसने कलीसिया को फिर से वापस परिवर्तित किया। इसने थोड़ा सा और आरंभ किया, उसने धर्मीकरण को प्रचार किया। आगे मार्टिन लूथर ने आकर धर्मीकरण को प्रचार किया। आगे जॉन वेस्ली आता है और पवित्रीकरण को प्रचार किया। फिर यहाँ इस कलीसिया युग में वे सीधे फिर से वापस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए फिर से आते हैं, उसी चिन्हों और चमत्कारों के साथ सीधे आगे आते हैं। यहाँ है जहाँ ये अंधकार के युग के 1500 वर्षों में से होते हुए बाहर चला गया, और वहाँ है जहाँ सबसे अंधकार या कलीसिया की सबसे लंबी अवधि जो हमारे पास कलीसिया के युगों में थी। फिर यहाँ है जहाँ यह आगे आरंभ होता है, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और बाइबल ने यह कहा, इस युग के अंत में जो यहाँ इस छोटे से अल्पसंख्यक लोगों को दबा दिया जाएगा, क्योंकि वही पेंटिकॉस्ट कलीसिया के काम करना आरंभ कर देगा जो उन्होंने यहाँ निकोलियन में आरंभ किया था। हे परमेश्वर, मैं अपना मुंह बंद रखूं जब तक कि मैं उस तक नहीं पहुंच जाऊं। आपने देखा, मैं वहां जो देख सकता हूं, देखो जब तक आप यहां नहीं देख सकते हैं, और मैं आपको इस कलीसिया के युग का संदेशवाहक दिखाऊंगा जो संप्रदायों से घृणा करेगा। संतानों में आत्मा उठ खड़ा होगा, ऐसा हमेशा ही रहा है। और अब हमारे पास एक, अब यदि आप इस पर ध्यान देंगे, यह यहाँ किस तरह से बहुत अधिक था, बाहर चला गया और अंत में इसे पूरी तरह से दबाकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद यह वापस आरंभ होने लगता है। लूथर ने इसे वापस खींच लिया, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और फिर ठीक अंत के समय में उसने इसे सीधे नीचे दबा दिया, जब तक कि यह लगभग पूरी तरह से बाहर नहीं चला गया। वहाँ बस एक छोटा जरा सा अंश वहाँ पर है, और यही है जब वह चिल्लाता है, यदि वह चुने हो के कारण दिन को नहीं घटाता है तो वहाँ कोई देह नहीं बचेगी, समझे? आप वहाँ हैं, ठीक अंत के समय पर। अब इसे मन में रखें। अब हम इस स्मुरना कलीसिया युग को आरंभ करने जा रहे हैं। पहले मैं इसे किसी कागज पर लिख देना चाहता हूँ जो कि मेरे पास है। अब दूसरी कलीसिया का युग स्मुरना रहा है और मेरा विश्वास है कि आप सभी मुझसे सहमत होंगे, या मुझे आशा है कि आप करते हैं या अधूरा, किसी भी तरह कि एरेनियस उस कलीसिया युग के लिए तारा था। वो परमेश्वर का संदेश वाहक था क्योंकि उसने देश को हिला दिया, फ्रांस गॉल के अंदर वहाँ आगे की ओर, और उसने कलीसियाओं की स्थापना की और उनमें से हर एक जन को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर स्थापित किया गया था। अन्य जुबान में बोलना, मुर्दों को जिलाना, बीमारों को चंगा करना, बारिश को रोकना और रोजाना अद्भुत काम को करना। वे जानते थे कि जीवित परमेश्वर लोगों के बीच रहता था। वह परमेश्वर का जन था क्योंकि यीशु ने कहा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, या उन लोगों ने कहा कोई भी मनुष्य ये काम नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। यह निकोदेमस था जिसने यीशु को ऐसा कहा था। अब एक व्यापार करने का शहर, व्यापार करने के लिए एक केंद्र, लीडिया की ओर और पश्चिम की ओर, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर, एक बड़ा बंदरगाह शहर, धन संपत्ति, मंदिर, इमारतें, स्कूल, चिकित्सा और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध। यहूदी स्मुरना में रहते थे और उन्होंने स्मुरियन के लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। पॉलीक्रॉप स्मुरना का पहला बिशप था। पॉलीक्रॉप और अन्य वफादार सेवकों ने स्मुरना के विश्वास करने वालों के अंदर गहरे परमेश्वर के विश्वास को स्थापित किया। प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने इस स्मुरना के लिए सत्य के शब्दों से उभारा। इस स्मुरना की कलीसिया का युग, कलीसिया का नाम इस स्मुरना था। मेरा मतलब इस स्मुरना, इसका अर्थ है कड़वाहट, लोबान या मृत से संबंधित होता है क्योंकि वे मर रहे थे। एक सताई हुई कलीसिया, परमेश्वर ने उन्हें सताई हुई कहा। परमेश्वर ने उनके सतावट को देखा और इसे सहन करने के लिए अनुग्रह दिया। उसने उसके महासंकट पर देखा और उन्हें मृत्यु पर जय को दिया, उनकी दरिद्रता को देखा और उन्हें उसमें धन दिया। इस स्मुरना की कलीसिया महासंकटों की आग की भट्टी से होकर गुजरी, लेकिन उसके प्रति एक मीठी सुहास महक थी। यही है जो बचे हुए हैं, न ही संपूर्ण स्मुरना कलीसिया, बस अवशेष लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उन बड़े 10 दिनों के क्लेश का मतलब 10 वर्ष का लहूलुहान सताया जाना है। मैं नहीं जानता कि मैं इस नाम का उच्चारण कर सकता हूँ या इसका उच्चारण कर सकता हूँ या नहीं। यह उस समय पर सम्राट था। मैं सोचता हूँ ये 67 नीरो के बाद से उन सब में एक लहूलुहान था। DIOCLETIAN जो वर्ष 303 से 312 AD के दौरान था। परमेश्वर ने इस स्मुरना को मृत्यु के निमित्त वफादार बने रहने के लिए उत्साहित करता है जैसे वो था। और मैं तुम्हें एक जीवन का मुकुट दूंगा जैसे पिता ने मुझे दिया है। परमेश्वर ने जय पाने वालों के लिए प्रतिज्ञा की है उस क्लेश के समय पर दूसरी मृत्यु पर विजय। उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उससे जो प्राण को नष्ट कर सकते हैं या प्राण को मार डालते हैं। या इस स्मुरना के लोगों को अंत तक सहन करना है। डरो मत मनुष्य, और एक जीवन का मुकुट तुम्हें दिया जाएगा। युगों में मसीहत का सताया जाना जो नमूना है इस स्मुरना का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे लेना चाहते हैं बस कुछ ही समय में प्रभु ने चाहा तो। अब यदि आप में से कुछ लोग इनमें से कुछ चूक जाते हैं, यदि मैं उन्हें बाकी कक्षा के लिए थोड़ा बहुत तेज लिखता हूं, तो हम निश्चित रूप से किसी भी समय आप हमसे ले सकते हैं। हमें आपको देने के लिए खुशी होगी, क्षमा करें। अब दूसरे अध्याय और 8वें पद से हम आज रात शुरू करते हैं। अब कल रात हमने उसे कहां पर छोड़ा था? वह निश्चित रूप से निकोलियन से घृणा करता था, क्या यह सही है? अब परमेश्वर क्या करता है? हमें पहले क्या पता लगाना होगा? यीशु मसीह का प्रकाशन, वह कौन है और वह क्या है? अब अगली बड़ी चीज हम यह देखते हैं, वह उस किसी भी चीज से घृणा करता है जो बावजूद उसके खुद के राज्य करने के उसकी कलीसिया के ऊपर किसी को भी राज्य करने को लगाएगा। वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। कैसे भी मैं रुकना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास यहां पद है, बस कुछ छोटा सा किसी बात का हवाला देने के लिए। कितने लोग याद कर सकते हैं कि जब वो भला नबी शमूएल, जब सारा संसार बाकी के संसार की तरह व्यवहार करना चाहता था, क्या आपको यह याद है? और नबी ने उनसे कहा, तुम गलत हो, लेकिन वे फिलिस्तीनियों की तरह व्यवहार करना चाहते थे और उन बाकी लोगों की तरह, तो ठीक है। यही है जो वास्तव में इस उसी पहले कलीसिया के युग में हुआ। यह अजीब बात है कि लोग नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें नेतृत्व करे, वे पीछे चलना चाहते हैं, वे किसी मनुष्य को चाहते थे। इसराइल जो उसने किया वो अब तक की गई ये सबसे बड़ी गलती है, जब अनुग्रह ने पहले से ही उनके लिए एक नबी का प्रयोजन किया था, एक अगुवाई करने वाला, उनके लिए एक मेमने का प्रयोजन किया, एक प्राचीनता के लिए, और उनके लिए आकाश से भोजन का प्रयोजन किया, और सारी अच्छी चीजें जिसे अनुग्रह ने उनके लिए प्रयोजन की थी। और फिर भी निर्गमन 19 में वे एक नियम को चाहते थे, वे चाहते थे दिव्यता के विद्वानों को बनाए और कुछ मनुष्य उनके पास हो, वे इसके अंदर भी कुछ तो करना चाहते थे। मनुष्य हमेशा उसी सृष्टिकर्ता से चालाकी करने की कोशिश करता है जिसने उसे बनाया है, और वह एक चीज को भी नहीं करता है लेकिन खुद को ही खत्म कर देता है। जैसे कुछ रविवार पहले मैंने उस संकरित धर्म पर प्रचार किया, और वास्तव में ऐसा ही है, जब आप कुछ भी संकरित करते हैं तो यह कभी भी नहीं, यह खत्म हो जाता है, यह समाप्त हो गया, यह अब और वापस नहीं आ सकता है। एक खच्चर फिर से प्रजनन नहीं कर सकता है कि और एक और खच्चर को लाए, क्योंकि वह एक खच्चर है, वह एक संकरित है। अच्छा मकई का दाना आप अच्छे संकरित मकई के दाने से अच्छे मकई को ऊपर नहीं ला सकते हैं, ऐसा होगा भी नहीं। यह हो सकता है ऊपर आए, लेकिन यह ओह यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज जो संकरित है अच्छी नहीं है, और एक संकरित धर्म अच्छा नहीं होता है। जब आप परमेश्वर ने जो कहा है उस पर कुछ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप करें, तो यह एक संकरित धर्म है। यह आकर्षित लग सकता है, ओ संकरित मकई का दाना प्राकृतिक मकई के दाने से अधिक चमकेगा, एक पुराना खच्चर दो घोड़ों के काम को करेगा। खैर यही है, यह काम नहीं करेगा भाई, यह अनुग्रह ही है कि हम इसके द्वारा बचाए गए हैं। हम कामों के द्वारा नहीं बचाए जाते हैं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा। तो यह हो सकता है, मैं आशा करता हूं कि आप इन टिप्पणियों के लिए नहीं सोचते हैं, आप एक तनाव के नीचे बैठे हुए हैं, और मैं इसे यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, आप समझे, क्योंकि यहाँ पर प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट और सभी प्रकार के लोग हैं, हम ये जानते हैं, और इसलिए मैं इसे महसूस करता हूँ। और आपको कभी तो एक बार कुछ तो अपने आप को नरम करना होगा, इस तरह से अपने आप इससे मुक्त करके। अब सुनना, कोई भी चीज जो संकरित है वो अच्छी नहीं होती है, आपको उस मूल को लेना होगा जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया है, तब आपको कुछ तो ऐसा मिलता है जो वास्तविक है। अब फिर हम देखते हैं कि यह इसराइल की कलीसिया, जैसा कि वे आगे बढ़े, परमेश्वर ने उन्हें खिलाया और उनकी देखभाल की और उनके लिए सब कुछ किया, और अंत में उन्होंने फिलिस्तीनियों की ओर देखा और अमोरियों को और उन भिन्न भिन्न को, और कहा, हम एक राजा को चाहते हैं, उनके पास कोई तो है जो हमें नहीं मिला। यही वो बात है आज लोग करते हैं। इनमें से एक हमारी बहनें टेलीविजन की ओर देखेंगी और कहेंगी, देखो ग्लोरिया स्वानसन या जो कोई भी वे हैं, उनमें से कुछ महिलाएं जो एक खास प्रकार की पोशाक पहने हुए होती हैं, और वे बस रुक नहीं सकती जब तक उन्हें वो एक पोशाक नहीं मिल जाती है। देखा, आप किसी महिला को शहर में देखते हैं, ओह क्या वो प्यारी नहीं है, आप क्या मन में लाते हैं उस महिला ने क्या पहना है। लोग बस इसी तरह से हैं। मैंने कहा कि यह नकल करने के दिन है, कोई तो किसी अन्य की नकल करना चाहता है। आप ले, आप अब बहुत से एल्विन प्रेस्ली हैं। मैं आपको बताता हूं, आप उन्हें मालगाड़ी में ढेर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह लोकप्रिय हो गया है शारीरिक में, नकलों में। हमारे पास धर्म में वही चीज है। वो मैं मार्टिन लूथर का इतिहास पढ़ रहा था, और आप में से कोई भी इतिहासकार जानता होगा, उन्होंने कहा कि यह एक रहस्यमय बात नहीं थी कि लूथर कैथोलिक कलीसिया का विरोध कर सकता है और इसके साथ जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह अपने सिर को ऊपर उठाकर रख सकता है उन सब कट्टरपंथियों के ऊपर जिन्होंने उसकी बेदारी का पालन किया और अब भी वचन के साथ बने रहता है। यही वो चमत्कार है कि कैसे परमेश्वर ने उसे साफ और सीधा रखा। अब इसलिए वे इस सैमुएल के पास आए, उन्होंने कहा हमें एक या हमारे लिए एक राजा बना दो, और प्रभु ने उसे बताया कि उसने उस विचार को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यह संगठन को अस्वीकार किया। जैसे उसने इसे अस्वीकार कर दिया, उसने संगठन को अस्वीकार कर दिया। वह शारीरिक गठन को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन संगठन को, शारीरिक गठन हमारे पास यह होने के लिए होना है, लेकिन संगठन को हमारे पास होने के लिए नहीं होना है, क्योंकि यह रेखाओं को खींचता है। हम फलाना फलाना है, क्या तुम एक मसीही हो? मैं मेथोडिस्ट हूँ, क्या तुम एक मसीही हो? मैं बैप्टिस्ट हूँ, इसका मतलब एक सुअर का जानवरों के बाड़े में रहने से अधिक कुछ नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक मसीही, मैंने एक रात को एक लड़की से मंच पर पूछा, क्या तुम एक मसीही हो? वह बोली, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, मैं हर रात एक मोमबत्ती को जलाती हूँ, जैसा कि मसीह धर्म के साथ कुछ भी लेना देना है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं एक अमेरिकी हूँ, यकीनन, खैर, इससे कोई लेना देना नहीं है, न ही एक भी चीज, आप एक मसीही हैं, क्योंकि आप दूसरे राज्य से संबंध रखते हैं, ये सही है, और आप ऊपर के एक अलग राज्य में हैं। अब शमूएल ने क्या किया? बस उसी काम को जो परमेश्वर ने यहाँ किया था। शमूएल ने इसराइल को एक साथ बुलाया, उसने कहा, अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा समय आया है कि मैंने आपको कभी ऐसा कुछ बताया जो सच नहीं था? कहा, मैं तुम्हारे बीच में परमेश्वर का नबी हूँ, मुझे बताओ, एक बार भी मैंने कभी आपको प्रभु के नाम में कुछ भी बताया जो पूरा नहीं हुआ हो? यही है जो शमूएल ने उनसे कहा। उसने कहा, और क्या परमेश्वर ने आपको नहीं खिलाया और आपका ध्यान नहीं रखा है और इन सारी चीजों को नहीं किया है? कहा, तुम दूसरे देशों के समान व्यवहार करने की कोशिश करने के द्वारा पाप को कर रहे हो। ओह, उन्होंने कहा, उसने कहा, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, मैंने कभी कोई आपसे पैसा ले लिया है? क्या मैंने कभी आपसे भेंट की मांग की है? या क्या मैंने कभी आपको कुछ भी प्रभु के नाम में बताया जो पूरा नहीं हुआ हो? उन्होंने कहा, नहीं, तुमने कभी हमारा पैसा नहीं लिया, यह सच है, और तुमने कभी भी प्रभु के नाम में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो पूरा नहीं हुआ। उसने कहा, तो मेरी बात सुनो, तुम बाकी लोगों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने के द्वारा पाप को कर रहे हो, लेकिन वे किसी भी तरह से एक राजा को चाहते थे, भले ही चाहे यह सही था या गलत, वे अपने विचार को अंजाम देना चाहते थे। इसी बात को कलीसिया ने ठीक यहाँ एफिसस पर किया है, उन्होंने निकोलियन की शिक्षा को लिया है, और जब उन्होंने किया, इसने उन्हें पागानवाद और मसीहत को एक साल बदलने के सीधा अंदर धकेल दिया, और 1500 वर्ष अंधकार के युगों का कारण बना। और जब लूथरन ने उन्हें बाहर निकाला, क्या दूसरे दौर में लूथर ने उसी बात को नहीं किया जो उन्होंने एफिसस में पीछे किया था? बिल्कुल किया। अब यदि आप ध्यान देंगे, वे धूपदान इस तरफ पूर्ण रूप से नहीं जले हुए थे, वे इस तरह से नीचे आने लगे और ऊपर आ गए। ठीक है, वो एक सबसे ऊंचाई में दूर जहां वो खड़ा था, ये एक जो यहाँ ऊपर था, और मसीहत को धीरे धीरे करके बाहर धकेल दिया गया, जैसे यह यहाँ से निकल गया जहां वह खड़ा हुआ था, क्रूस के आकार में, जैसे हम उसे चौथे अध्याय में देखते हैं, इस तरह से क्रूस के आकार में, और यह उसका दायां हाथ है और यह उसका बायां हाथ था। अब ठीक यहाँ वह था, उसका हाथ इस कलीसिया पर था, और उस कलीसिया पर वह अल्फा और ओमेगा दोनों था, और निश्चित रूप से पूरी तरह दोनों के बीच था, सब जो दूसरे शब्द हैं। लेकिन उसने विशेष रूप से कहा अल्फा और ओमेगा, उसके सिर के ऊपर मेघधनुष था जो उसकी वाचा थी। अब यदि आप ध्यान दें तो पेंटिकॉस्ट का उजियाला जहाँ यह आरम्भ हुआ, धीरे धीरे करके बाहर निकल गया। ये मनुष्य एरेनियस, पॉलीक्रॉप, वे बाकी के सब लोग, उन्होंने उनकी गवाही को उनके लहू के साथ मोहरबंद किया, इतना तक कि इसने अंत में मसीहत को अंधकार के दिनों के अंदर दबा दिया। अब देखो, पहला युग उसके दूसरी ओर बड़ा उभार था, वहाँ से कुछ जरा सा उजाला आ रहा था, थोड़ा और उजाला, उसके बाद थोड़ा और उजाला, देखें कि यह कैसे फिर से चमकने लगता है, उस दिन तक आ रहा था, और अब इस युग के अंत पर यह भविष्यवाणी की गई है कि यह एक लौदिकियन के लिए आता है, एक गुनगुना। अब यहाँ है ये, इसलिए यदि यहाँ यह चीज उन्हें इसके लिए लेकर आई, तो हम यहाँ पेंटिकॉस्ट में क्यों चाहेंगे? और आप जानते हो, बाइबल ने कहा एक पशु होगा, और हम जानते हैं कि यह रोमन पोप का शासनकाल है, यह बिल्कुल सही है। और फिर वे उस पशु के निमित्त एक छवि को तैयार करेंगे। एक छवि क्या है? कुछ तो जो इसके जैसा बनाया गया है, और यही कलीसियाओं का संगठन है, और पेंटिकॉस्ट इसी में है। एक समय आएगा जहां आप या तो एक संगठन से संबंध रखेंगे या आप अपने दरवाजे को खुला नहीं रख सकते हैं। अब आप देखना कि क्या ये सच नहीं है। यही कारण है कि हम इसे मरने तक कूटते हैं। जी हाँ श्रीमान, आप असमर्थ, उससे भी नीचे, वे आपको इतनी बुरी तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे, इतना तक वे कोशिश करेंगे आपको खरीदने या बेचने नहीं देंगे, जब तक आप उस संगठन के चिन्ह को अपने ऊपर नहीं लगा लेते हैं। यह सीधे इसमें लेकर आता है। बिल्कुल वैसे ही उस दिन की तरह उन्होंने उन्हें जला दिया। वे मैं वहीं उस रणभूमि में खड़ा था, मैं एक बालक की तरह रोने लगा, वहाँ जहाँ पर तलवार चलाने वालों ने उस पुराने रणभूमि में मजबूर किया होगा, और उन चीजों को देखकर और जानकर कि मेरे बहुत से मसीह भाइयों को शेरों के द्वारा खाया गया था, और वहाँ उस जमीन पर टुकड़े टुकड़े किया गया, और महिलाओं और छोटे बच्चों और इत्यादि को, और मैं सोचता हूँ यदि वे सारे विश्वास में नीचे चले गए तो क्या मैं उन्हें अब नीचे रहने दूंगा? नहीं श्रीमान, भाइयों, परमेश्वर मुझे विश्वास के लिए खड़े होने दीजिए जो एक बार संतों को सौंपा गया था। वही एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने अलोकप्रिय। कोई तो हमेशा ही यह कहना चाहता है, ठीक है, किसी ने तो कहा ज्यादा समय नहीं हुआ, ओह, कार्य क्षेत्र पर कितने बड़े बड़े सेवकों ने मुझे बुलाकर और कहा, भाई ब्रैनम, यदि आप इसे नहीं रोकते हैं तो हर एक संगठन आपके विरोध में हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा वहाँ एक है जो विरोध में नहीं होगा, वही वो एक है जो स्वर्ग में है, वही है वो जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, समझे? अब मैं हर एक संगठन में लोगों से प्रेम करता हूँ, यकीनन, लेकिन क्या मैंने कभी आपको कुछ भी ऐसा बताया है जो प्रभु के नाम में जो पूरा नहीं हुआ? देखा, क्या जो सब कुछ बताया गया है क्या सही सही पूरा हुआ है? क्या आपसे मैंने कभी पैसों के लिए मांग की है? तो फिर संगठनों से बाहर बने रहो, आप मसीह में आजाद बने रहें, पवित्र आत्मा हमेशा ही कलीसिया में अंदर और बाहर मंडराता रहे। केवल एक ही चीज की समस्या है, इन सभी छोटे छोटे मतभेदों को आपसे दूर करें, छोटे छोटे बात और कुछ हास्यमय भावनाएं जो भाइयों के प्रति आपको घेरे हुए हैं, और इस तरह की चीजें इसे झटक कर दूर करें। कड़वाहट की कोई जड़ कभी भी आपके प्राण के अंदर न आने दें, यदि आप आने देते हैं तो यह आपको नष्ट कर देगा। सही है, प्रेम रखें। मैं परवाह नहीं करता हूँ कि लोग आपसे कितनी घृणा करते हो, कुछ भी हो, आप उन्हें प्रेम करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको जरूरत है, आपको मोहरबंद नहीं किया जाता है, आपके पास अभी भी एक ढीली ढाली जगह है, तो आगे बढ़ो, उस पर वापस आ जाओ और मसीह के लहू से ठीक सही तरह से उसे मोहरबंद होने दो। यह कड़वाहट की सभी जड़ों से आपको साफ कर देगा। जी हाँ, अब देखो, लेकिन हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। पेंटिकॉस्टल आशीष लगभग 1906 में गिरी, वहाँ कहीं पर। तो आज रात हमारे साथ एक सेवक बैठे हुए हैं जो तिब्बत से आए हुए एक मिशनरी हैं, सबसे एक। मैं इसे नहीं कहता क्योंकि वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो घर नहीं गए हैं, मुझे लगता है कि वह अभी भी यहाँ पर हैं। वे हमारे लिए थोड़ा कुछ बोलने वाले थे इससे पहले मैं यहाँ पर आता, और वो मनुष्य पहले पेंटिकॉस्ट को याद करता है। वहाँ कोई भी संगठना नहीं थी, हर एक के पास एक समान बातें थी। ओह, वहाँ पर सीधे गलत कदम को उठाना ये कितना आसान है, और ये कितना अच्छा दिखाई देता है उन बौद्धिक लोगों के लिए। देखो, इज़राइल को थोड़ा ही पता था जब वे तट के पास खड़े थे, चिल्ला रहे थे। अब आप कहते हैं इस तरह का धर्म कुछ तो नया है, क्यों? यह तो सबसे पुराना है, यकीनन। इससे पहले कि दुनिया को कभी बनाया गया था, वे चिल्ला रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। परमेश्वर ने ऐसा कहा, अय्यूब से पूछा, जब वह भोर के तारे एक साथ गा रहे थे तब वह कहाँ पर था? और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्ला उठे, यही है इससे पहले कि दुनिया कभी बनाई गई थी। लेकिन अब इज़राइल को देखो, उन्होंने अद्भुत कार्यों को देखा, यही शुरुआती पेंटिकॉस्ट है, इज़राइल, जो उस दिन के पेंटिकॉस्ट हैं। अब उन्हें मिस्र से बाहर लाया गया था, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया था, उन्हें सभी प्रकार के बड़े चिन्हों और चमत्कारों को देकर, और उन्हें छुड़ाया। और जब वे उस समुद्र तट पर खड़े थे और एक पेंटिकॉस्टल की सभा हुई थी, उन्होंने किया, अब सुनना, मूसा ने आत्मा में गाया और मरियम ने एक डब को बजाया और नीचे तट पर दौड़ कर गई, इस डब को बजाने लगी आत्मा में नाचते हुए, और इज़राइल की पुत्रियां उसके साथ साथ नाचने लगी, आत्मा में नाच रहे थे। क्या यह पेंटिकॉस्टल सभा नहीं है? मैंने ऐसी एक सभा कहीं नहीं देखी है। उन्होंने कुछ तो विश्वास किया कि वो प्रतिज्ञा देश 40 वर्ष उनसे आगे की ओर था, यह तो केवल लगभग 40 मील की दूरी पर ही था, लेकिन इसके लिए उन्हें 40 वर्ष लग गए 40 मील की दूरी तय करने के लिए, क्योंकि उन्होंने गलत चीज को चुना था। उन्होंने एक नियम के होने को चुना बजाय कि पवित्र आत्मा उनके लिए नेतृत्व को करे। आग का स्तंभ उनको वहाँ से होते हुए लेकर जा रहा था और उनका नेतृत्व कर रहा था। वे किसी चीज के लिए चाहते थे कि उनके खुद के लिए कुछ तो करे, किसी तरह के याजकों को चाहते थे और कुछ उच्च पदाधिकारी व्यक्तियों को और एक कुछ धर्म ज्ञानी। वे इस बारे में वाद विवाद को कर सकते हो और बजाय इसके कि बस आगे बढ़ते रहें और पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करे, वे आत्मा में थे। परमेश्वर ने उन्हें हर एक चीज प्रदान की थी, लेकिन उनके पास कोई तो होना था ताकि इसके अंदर कुछ तो करे। ये बस फिर से संकरित करने की तरह है। गाय को वैसा ही रहने दो, घोड़े को वैसा ही रहने दो, भोजन को वैसा ही रहने दो। वे विज्ञान में दावा किया है, पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट में इसके बारे में लेख है। यदि वे भोजन को इसी तरह से संकरित करते रहे और लोग इसे खाते हैं जैसे कि मुर्गियां, उन्हें वे बेचारी मुर्गियां प्राप्त होती हैं, इतना तक इसके कोई पंख नहीं होते या पैर नहीं होते हैं, और यदि यह पड़ा रहता है तो यह अपने आप मर जाता है। वे केवल एक वर्ष ही जीवित रह सकते हैं और मांस तंतु इतना नरम होता है कि आप शायद इसे खा भी नहीं सकते हैं और लोग इसे खा रहे हैं। यह लोगों को दूषित कर रहा है, ये सही है। आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वर्ष के अंदर ही समलैंगिकता लगभग 40% बढ़ गई है, और क्या आप जानते हैं कि विज्ञान का दावा है कि महिलाएं अपने कंधों पर से चौड़ी हो रही हैं और अपने कमर में तकड़ी होती जा रही हैं, और पुरुष अपने कंधे पर से सकड़े हो रहे हैं और कमर से चौड़े। आप दूषित बीजों को खा रहे हैं, आप दूषित चीजें खा रहे हैं। आपके शरीर को प्राकृतिक चीजों पर फलने फूलने के लिए बनाया था, और यह क्या कर रहा है, यह यहाँ तक पुरुषों और महिलाओं के प्राकृतिक नियम को भी बदल रहा है। इतना तक हॉलीवुड, यहाँ तक कि हमारी सरकार और सब कुछ दूषितपन से भरा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वे इसे अपने आप के लिए ला रहे हैं, अपने स्वयं के ज्ञान के पेड़ के द्वारा खुद की हत्या कर रहे हैं। आदि की ओर वापस जाएं, प्रकृति को वैसा ही रहने दें, परमेश्वर को वैसा ही रहने दें, कलीसिया को पवित्र आत्मा में रखें और इन सभी बिशपों और पोप से दूर हो जाएं जो सभी प्रकार की शिक्षा के साथ हैं। वापस जाएं जहां हमने आरंभ किया, वापस जाएं। यीशु आज रात को आएगा, आप कहेंगे मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, वह कहता है ये ऐसा आदि से नहीं था, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, ये ऐसा आदि से नहीं था। आदि में क्या था, एक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का पेंटिकॉस्टल अनुभव, ये इस तरह से आरंभ हुआ। लेकिन देखो हमें इसे दूषित करना था, ओह यह सुंदर बनाता है। यकीनन वह छोटी सी कलीसिया वहाँ चारों ओर खड़ी है, नाच रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और नीचे सड़क पर और लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इसी तरह से हर एक चीज हो रही थी। यह बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन अब हमारे पास बड़े बड़े स्तुति गान हैं और प्रेरितों की संस्था है और ओह डॉक्टर पीएचडी एलएल दुगना एलडी फलाना और फलाना जो हमारे पास्टर पद के लिए है, और बाहर आकर और कहते हैं आमीन जैसे एक बछड़े को ऐठन आई हो, और इसी तरह से आगे जाता है और सब उस तरह की बातें। मुझे क्षमा करना, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मुझे क्षमा करें, मेरे कहने का मतलब इस तरह से नहीं था, समझे, मेरा मतलब यह नहीं था, यह इसे परमेश्वर का सेवक नहीं बनाएगा। लेकिन देखो उन सबको मैं, यह बस मेरे मन में आया, देखो लेकिन खड़े होकर और वे सभी इस तरह से अलग अलग बातें कहते हैं, सामने से वकालत करते हैं, कहते हैं अब नहीं, नहीं तुम यह सही नहीं कर रहे हो। आमीन। मैं एक अच्छी पुराने पेंटिकॉस्टल की सभा को पसंद करता हूँ जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और आप बस बिल्ला रहे हैं और जय जयकार करते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए एक महान समय को बिता रहे हैं। इसी तरह से है, आत्मा की पकड़ लोगों पर होती है, लेकिन हम आप एक आमीन को नहीं सुन सकते हैं। अब मुश्किल से ही इसके बाद यह एक आमीन आता है। हालांकि यही है जहां हम पहुंचते हैं, आप देखते हैं यह संगठन कठोर घमंडी। अब क्या इससे संबंधित कोई भविष्यवाणी थी? आपको कल रात बताई गई पौलुस की भविष्यवाणी याद है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में घुस जाएंगे और आपके ही वर्ग के लोग आपके ठीक आपकी ही कलीसिया में, वे रोमन कैथोलिक कलीसिया आ रहे हैं, तुम्हारे बीच में उठ खड़े होंगे, उनके बाद जेलों को दूर खींच लेंगे और पौलुस के बताए हुए भेड़िए हम देखते हैं निकोलियन बन गए। फिर से नबी के जरिए से आत्मा को बोलते सुनना, अंतिम दिनों में भयानक समय आएगा क्योंकि मनुष्य अपने खुद के चाहने वाले होंगे। मैं डॉक्टर फलाना और फलाना हूँ, तुम मुझे बताओ इसके विषय में अब क्या है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, हालेलुया, या मैं एक पेंटिकॉस्टल हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि आप सभाओं से पेंटिकॉस्टल नहीं है तो इसका अनुभव देखो। जी हाँ श्रीमान, मैं असेंबलियों से संबंधित हूँ, मैं चर्च ऑफ गॉड से संबंधित हूँ। खैर, इससे परमेश्वर को क्या फर्क पड़ता है? आपको वहाँ ऊपर के राज्य से संबंधित होना है। देखो, यह सही है। अब यदि आप देखें तो ये सारी चीजें बस एक मौज मस्ती का समूह है। अब यह कहा, भीट, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ओह, वे रविवार की रात को कलीसिया नहीं जा सकते जब टेलीविजन पर कुछ अच्छा कार्यक्रम होता है। ओह मेरे प्रभु, हमेशा वे, यहाँ तक कि कलीसियाओं की बॉल खेलने की टीमें होती हैं और सूप भोज और क्रिकेट पार्टियां होती हैं, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी और उन भले लोगों को तुच्छ जानते हैं। ये उन लोगों को तुच्छ जानते हैं। देखो, ये उन लोगों को तुच्छ जानते हैं, उन्हें घुटा देते हैं, और उन लोगों को तुच्छ जानते हैं जो भले हैं। ओह, आप कहते हैं वे साम्यवादी हैं भाई। ओह नहीं नहीं नहीं, डीट घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी और उन लोगों को तुच्छ जानते हैं जो भले हैं। एक भेष को सांप्रदायिक अनुभव, देखो वे भक्ति का भेष तो धरते हैं पर उसकी शक्ति का इंकार करते हैं। इस दिन पर आप क्या होंगे? देखो, भक्ति का भेष तो धरते हैं, रविवार को कलीसिया को जाते हैं जितना आप पवित्र हो सकते हैं, और रविवार की दोपहर को छोटे छोटे निकरे पहनते हैं, आंगन पर घास काटना, और बाहर ओए ट्रेल 92 पर होते हैं, और पास्टर बाहर जाकर सिगरेट पीता है और वापस आता है। आप जानते हैं भक्ति का भेष तो धरते हैं। तो पास्टर, उनके पास वहाँ एक कलीसिया है, उन्होंने मुझे बताया कि एक महिला को एक दिन चंगाई मिली। बेकार की बात, अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या, मैं एक रात को उस एक छोटी सी कलीसिया में था, वह छोटा सा मिशन नीचे कोने पर था, और वहाँ कोई तो था जो वहाँ जाता था, कुछ तो बोल रहा था जो, ओह प्रिय, तुम कभी भी इस तरह से घूमते मत रहो, यह तो पागल कुत्ता है। ओह, तुम वहाँ उसके आसपास जाकर मूर्ख मत बनो, यही वे पवित्र शोर शराबा करने वाले लोग हैं, तुम कभी नहीं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना, क्योंकि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। यह बिल्कुल सही है। वहाँ आप हैं, महिलाओं की रक्षा करने वाला समाज, यह समाज, वह बेचारी कलीसिया के पास तो बहुत से समाज हैं कि वे यहाँ तक ये अब और अधिक सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं। पास्टर के पास 20 मिनट का भी समय नहीं हो सकता है, और तब उसे लगभग कुछ तो और ही बात करना है। देखा, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो डीकन बोर्ड उसे भेंट करेगा। जी हाँ श्रीमान। ओह भाई, एक अच्छे पास्टर को आज क्या करना होता है? बस उसे सबसे अच्छा करना है, वो वहाँ खड़ा होकर और उन अंगों को काट सकता है जहाँ वे चाहते हैं, और जहाँ वे चाहते हैं वहाँ वो हिस्सा गिरने दो, और वहाँ इस गोफन को मारे। बस ऐसा ही है। जी हाँ श्रीमान, ये सही है। किसी को मत छोड़ो, बस वचन को प्रचार करो, और ठीक इसके साथ बने रहें, बस ठीक हथौड़ा मारते रहो। यदि वे आपको जेल में डालते हैं तो जेल में इसका प्रचार करो, यदि आपको कहीं और डाल देते हैं तो आप कहीं भी जाएं, प्रचार करें, बस प्रचार को करते रहें। यह सही है। अब यही है जो हुआ है, देखो वे इसे खोट कर खत्म कर रहे हैं। अब हम उस स्मरणा युग में आ रहे हैं, आठवां पद, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लेख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप हर बार ध्यान दें कि वह खुद ही एक कलीसिया के युग के लिए परिचय को देता है। वह अपनी दैविकता के विषय में आगे कुछ रखता है, यही वो पहली चीज है जो वह कलीसिया को अवगत कराने की कोशिश करता है, जो वही उसकी दैविकता है। वह परमेश्वर है। आप यहाँ उस बड़े मुद्दे को देखते हैं जो इरेनियस और वे इसके विषय में वाद विवाद को कर रहे थे। उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि परमेश्वर तीन ब्रह्मांड में है और यह तीन व्यक्तियों में एक परमेश्वर है और इसमें परमेश्वर है। उसने कहा ऐसी कोई एक चीज नहीं है, यह एक व्यक्तित्व के शीर्षक है और वह सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। ये सही है। तो आप नहीं, उनके पास हमेशा से ही ऐसा था और परमेश्वर यहाँ आरंभ में खुद को उसकी दैविकताओं में से एक का परिचय दे रहा है। आप देखो कि वह खुद का परिचय दे रहा है। पहला यहाँ पर, मैं वो हूँ जो था, जो है और जो आने वाला है, और मैं सर्व सामर्थी हूँ। यहाँ वो ठीक इस पुराना युग में अब आरंभ करता है। अब उसे सुनो, मैं इस पुरना की कलीसिया के दूत को, और हम विश्वास करते हैं कि इरेनियस होना चाहिए। यह लेख की जो प्रथम और अंतिम है, देखा, स्वयं का परिचय दिया। अब मैं इस कलीसिया के युग का परमेश्वर हूँ। मैं यहाँ चार या पांच विभिन्न ईश्वरों को आसपास नहीं चाहता हूँ। मैं परमेश्वर हूँ, देखो ऐसा ही है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। आमीन। अब यही वो परिचय है। अब स्मरणा का अर्थ कड़वाहट होता है और यह लोबान, लोबान के शब्द से आया, और वो पहली कलीसिया और उसने उसके पहले प्रेम को खो दिया था जो इफिसियस कलीसिया थी, और इस कलीसिया ने एक कड़वाहट की जड़ के साथ आरंभ किया था जो उसमें आ रही थी, क्योंकि ये कलीसिया जो मुख्य कलीसिया है, इसमें का बड़ा हिस्सा, उसमें से अधिकांश हमेशा ही कलीसिया में पवित्र आत्मा के प्रभुता होने के खिलाफ वार कर रहा था, और वे खुद ही प्रभुता को लेना चाहते थे। वे एक याजक गण को बैठाना चाहते थे। वे उसी तरह कार्य को करना चाहते थे जैसे पुराने नियम के लोगों ने किया था। वे याजकों को चाहते थे, और वे यदि वे पागान के देवता जो वहाँ पहले जहाँ वे परिवर्तित हुए थे उनके पास याजक और इत्यादि थे, जो जुपिटर के और वीनस के याजक और ऐसे ही इत्यादि, वे उसी चीज को उसमें लाना चाहते थे ताकि इन पुरुषों को बनाए। देखो सारी चीजें आरंभ से ही पागान है। सारे पागानों के पास वे याजक और उसी तरह की चीजें हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर की कलीसिया, उसके लिए ये चीजें अयोग्य है। मसीह हमारा याजक, हमारा महायाजक है। हमारे पास एक महायाजक है, एक मेज भी है जिस पर से हम खाते हैं। इस कलीसिया ने कड़वाहट की जड़ को उत्पन्न करना आरंभ कर दिया था। क्यों? यह उन लोगों के खिलाफ कड़वाहट थी जो आगे पवित्र आत्मा के साथ आगे जारी रखना चाहते थे। प्रेम धुंधला होने लगा था और वे संस्था और संप्रदायों से इसे अदला बदली करने की कोशिश कर रहे थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से दूर हो रहे थे। इस पर सोचे, यही कारण है कि वो कड़वाहट उनमें थी। तो ठीक है, अब पहली कलीसिया, यह कड़वाहट अंदर रेंगना आरंभ हुई, दूसरी कलीसिया थोड़ा और अंत में यह रेंग कर सीधे अंदर आ गई, क्योंकि वे एक बेहतर कलीसिया बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे कर रहे थे ठीक। यहाँ उन्होंने कुछ तो प्रतिष्ठित किया था। बड़े बड़े रोमन लोग अंदर आ सकते थे। क्यों? उनके पास एक पोप था, उनके पास वे बड़े बड़े पुरुष थे, कार्डिनल्स और इत्यादि। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, वे सारे शोर शराबे से दूर रहते, और जो कुछ भी उनके पास था बहुत ही शांत। ऐसा दिखा कि वे मर रहे हैं, वे मर रहे थे, और इसलिए वे प्रतिष्ठित हो गए, और उन्होंने एक बेहतर समिति देह को बनाया। पहली बात जो वहाँ पर थी, उनके पास एक बड़ी कलीसिया संबंधित संप्रदाय में सारी चीज थी, रोमन यूनिवर्सल कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया इस अंधकार के युग में। खैर, तब उनके पास ऊंचे पद के लोग थे और उनके पास वर्ग था। ओह, यह उसकी तुलना में ज्यादा आकर्षक थे जब वे हमेशा ही सड़क पर बाहर खड़े रहते थे, और वे बकरियों की खाल ओढ़े जैसे भेड़ों की खाल ओढ़े, और बेसहारा और भिन्न दिखे, और उन पर हंसा गया और उनका मजाक उड़ाया गया, और जैसे पौलुस ने इब्रानियों 11 अध्याय में कहा, क्योंकि ये विशाल बड़ी अच्छे वस्त्र पहनी हुई कलीसिया अंदर पेटीकोट के साथ, और ये सारी अन्य चीजों को जिस पर इस तरह से पहनते हैं, यकीनन ये सम्मानजनक दिखता। पौधर आदरणीय डॉक्टर पौधर फलाना और फलाना, ओह मेरे प्रभु, वे दिखावे के लिए कुछ असली कुत्ते रख सकते हैं, लेकिन आप देखो यह एक संकरित चीज थी, संकरित। देखो इसमें कोई भी जीवन नहीं है और वे अब और वापस नहीं जा सकते हैं। यही वो कारण है वे कभी भी ऊपर नहीं आते हैं। लूथरन की बेदारी कभी भी फिर से ऊपर नहीं आई, वेस्ली की बेदारी कभी भी फिर से ऊपर नहीं आई, नासरीन की बेदारी कभी भी फिर से ऊपर नहीं आई, नहीं पेंटिकॉस्टल बेदारी फिर से ऊपर आई। क्यों? क्योंकि आपने इसे मार डाला, आप इसे संसार के साथ संकरित करते हैं, निकोलियन विचार के साथ। पवित्र आत्मा को उनके रास्ते पर नहीं आने देना है, ये सही है। आप कलीसिया को संकरित करते हैं और ये खुद को फिर से वापस प्रजनन नहीं करवा सकते हैं। जब आप वापस प्रजनन करते हैं तो आपको और अधिक मेथोडिस्ट मिलते हैं, बैप्टिस्ट वापस प्रजनन करते हैं और अधिक बैप्टिस्ट मिलते हैं, कैथोलिक वापस प्रजनन करते हैं और अधिक कैथोलिक मिलते हैं। आपको वही बात मिलती है, आप कान को बंद कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपको कुछ तो बताने दो, जब पवित्र आत्मा वापस आता है ये नए जन्म और नए जीवन को लाता है, रूपांतरण, आत्मा का बपतिस्मा कलीसिया को फिर से वापस अपने आप में लाता है, इसमें जीवन को वापस डालता है। संकरित मकई के दाने में जीवन नहीं होता है, ये कौन सा जीवन है? ये बस लगभग जीवन का सार निकल गया है। अब हम वहाँ उस अंधकार के युग में पहुँचे हैं, जो कुछ थोड़ा आपके पास है इसे पकड़ कर रखें। उसने कहा उन्होंने इसे पूरा खींचकर बाहर निकाला था, अब लेकिन यह फिर से खुद को पुनः उत्पन्न नहीं करेगा। अब लेकिन यीशु मसीह की देह कोई संगठन नहीं है, यीशु मसीह की देह एक रहस्यमय देह है, यह एक देह है, एक राज्य में, यही एक आत्मिक राज्य है जो यीशु मसीह के द्वारा धरती के ऊपर स्थापित करता है। इस राज्य का राजा होने के नाते वो महायाजक इस राज्य में भ्रमण के लिए बलिदानों को चढ़ाता है। एक नबी वो वचन है जो सत्य का प्रचार करता है और इस राज्य में परमेश्वर का उजाला लाता है, और वह इस राज्य में दोनों है, नबी, याजक और राजा। और हम इस राज्य में कैसे आते हैं? संप्रदाय के द्वारा, पत्र के द्वारा, हाथ को मिलाने के द्वारा, लेकिन एक आत्मा के द्वारा। हम सभी ने एक देह में बपतिस्मा लिया है जो यीशु मसीह की रहस्यमयी देह है, और हमने वहाँ बपतिस्मा लिया है, ना ही पानी से, ना ही छिड़काव के द्वारा, ना ही उंडेलने के द्वारा, ना ही किसी भी तरह के पानी के बपतिस्मे के द्वारा, लेकिन एक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के। हम सभी एक देह में बपतिस्मा लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 12। जी हाँ, हम इस देह के अंदर एक आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, तब हम मसीह के अलावा किसी भी चीज से संबंधित नहीं होते। आप मसीह के हैं, यह एक परमेश्वर का रहस्यमयी राज्य है जो स्थापित हुआ है कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा अंदर आते हैं। मैं इसे पसंद करता हूँ।
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be
PhD, देखो,
to be or boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
क्या आप खुश नहीं हैं? जी हाँ श्रीमान, बस उनमें से एक हैं, बस ऐसा ही है। मुझे याद है कि मैं वहाँ मेम्फिस से होकर जा रहा था, वो छोटी सी बुजुर्ग अश्वेत महिला उसके सिर को वहाँ पर झुकाए हुई थी। उसने कहा, सुप्रभात पास्टर। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं एक पास्टर हूँ? उसने कहा, प्रभु ने मुझे बताया, उसका पास्टर वहाँ नीचे सड़क पर से आ रहा है, एक चमड़े की टोपी पहने हुए, एक सूटकेस को लिए हुए होगा। कहा, मैं जान गई आप वही थे जब मैंने आपको आते देखा। देखा, ओह, वह उनमें से एक थी, यह सही है। ओह, परमेश्वर कितना भला है। अब मैं कुछ तो विश्वास करता हूँ। जिस छोटी लड़की के लिए आपने रविवार की रात को प्रार्थना की थी, जो बेडफोर्ड से है, अभी अभी मृत्यु हो गई है। यह नहीं, कृपया प्रार्थना करें, एक छोटी लड़की है जिसके लिए हमने उन्होंने उसके लिए यहाँ रविवार की रात को प्रार्थना की, जो बेडफोर्ड से है, अभी अभी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी प्रकार से, किसी भी तरह से प्रभु हमारी प्रार्थनाएं उस बच्चे के लिए जाने दीजिए। हम उस छोटी सी चीज को आपको सौंपते हैं, हमारे पिता परमेश्वर, और हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो यहाँ थे और प्रार्थना कर रहे थे और उस छोटी लड़की के लिए मांग रहे थे। हे पिता परमेश्वर, मैं मांगता हूँ कि होने पाए यह रिपोर्ट ऐसी ना होगी। पिता, हम नहीं जानते, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दया करेंगे और शक्ति को देंगे और वो छोटा सा बालक उठकर खड़ा हो जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए जी उठे। यीशु मसीह के नाम में इसे मांगते हैं, आमीन। होने पाए, प्रभु यीशु उसकी आशीषों को जोड़े। अब एक कलीसिया, अब कलीसिया का नाम उसके चरित्र की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्या आपने ध्यान दिया, स्मरणा का अर्थ कड़वाट होता है, और आपने ध्यान दिया, अब कलीसिया में से हरेक यह कलीसिया के नाम का चरित्र के साथ कलीसिया का कुछ तो लेना देना होता है। मैं यहाँ कुछ कह सकता था, लेकिन अच्छा होगा नहीं कहूँ, क्योंकि आप मुझे गलत समझेंगे। देखा, आपका नाम भी मायने रखता है। आपको शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन यह रखता है। ओह जी हाँ, अब आप कहते हैं यह अंक विज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब याकूब का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे याकूब कहा, जो छल करने वाला था, लेकिन जब उसने दूत के साथ मलयुद्ध किया तो परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इज़राइल कर दिया, एक राजकुमार। क्या यह सही है? शाउल, जो तरसुस का शाउल था, जो एक बुरा व्यक्ति था, लेकिन जब वह यीशु के पास आया तो उसे पौलुस बुलाया गया। शिमोन का नाम शिमोन था, लेकिन जब वह यीशु के पास आया तो उसे पतरस बुलाया गया, एक छोटी चट्टान। जी हाँ श्रीमान, वो आपका नाम जुड़ा हुआ है, जो आप हैं, यह आपके चरित्र के ऊपर एक प्रभाव को डालता है। और इस कलीसिया को स्मुर्णा कहा जाता था, क्योंकि यह मर रही थी। स्मुर्णा का अर्थ है कड़वाहट। दूसरे शब्दों में, कड़वाहट की एक जड़ ऊपर आ रही थी और इसे घुटन को दे रही थी। ये लोबान की ओर इसके मार्ग पर थी। यही वो कारण है कि वे लोबान के साथ शरीर का अभिषेक करते हैं। देखो, यह लोबान लोबान होता है, एक लेप के रूप में। लोबान का उपयोग शवों को अभिषेक करने के लिए किया जाता है, उसके बाद उन्हें लेप लगाते हैं और इत्यादि। ये मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है और कलीसिया मर रही थी। और ओह, क्या आप आज नहीं देख सकते हैं दोस्तों, उस महान पेंटिकॉस्टल की गतिविधि को, जिसके पास कुछ वर्ष पहले जीवन हुआ करता था? क्या आप नहीं देख सकते हैं, इसका अब लोहबान से अभिषेक किया हुआ है। समझे, वही लेप यहाँ इस कलीसिया में था, जो ठीक नीचे गिर रही है, और इस एक को यहाँ नीचे इसका अभिषेक किया जा रहा है। मर रहे हैं, क्योंकि वे संप्रदाय संबंधित चित्रों की ओर वापस जा रहे हैं और अपने सफेद वस्त्रों को, जो संतों के हैं, उतार रहे हैं। वे छोटे छोटे लोग जो वहाँ पर खड़े थे, और एक सच्चा पवित्र आत्मा था, उन्होंने अन्य भाषा में बात की और परमेश्वर को जाहिर किया। और भाई, वे उतने ही ईमानदार थे और पूरी तरह से सच्चे, और जैसे वर्णन किए गए थे, वे पूरी तरह से सच्चे थे। आप उन पर कहीं भी भरोसा कर सकते थे। अब आप नहीं जानते कि क्या भरोसा करना है और किस पर भरोसा करना है। समझे, वहाँ पर कुछ तो घटित हुआ है, कुछ तो हुआ है। वो क्या है? वे कड़वाहट की लोबान से अभिषेक हुए थे, उठ रहे थे। एक इसका क्या कारण था? एक अंदर आता है, वहाँ एक कलीसिया थी पहली, जो एक प्रमुख परिषद था। तब उन्होंने इसे असेंबलीज ऑफ गॉड कहा। असेंबलीज ऑफ गॉड में से चर्च ऑफ गॉड आया। चर्च ऑफ गॉड से उसके बाद उन्होंने यहाँ से वहाँ देखना आरंभ किया, कहते हुए तुम असेंबलीज हो, दूसरे कहते हैं तुम चर्च ऑफ गॉड हो। उसके बाद उसमें से यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड आता है, किसी मुद्दे को लेकर। और फिर पहली बात आप जानते हैं, बजाय उजाले को स्वीकारने के और उसमें चलने के, किसी कारण से उन्होंने खुद को संगठित कर दिया, इतना तक वे उजाले को स्वीकार नहीं कर सके। अब जब वो यीशु मसीह के नाम में का बपतिस्मा उसे आगे लाया गया, बजाय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के, उस असेंबली ऑफ गॉड के अंदर उन्होंने पहले से ही खुद को लंगर किया था, तो वे इसे बदल नहीं सके। और वे जानते हैं कि यह सच्चाई है। मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूँ कि आकर यह दिखाए, क्या यह बाइबल के अनुसार सही नहीं है? यह बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन वे क्या कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते। देखो, वे उनके संप्रदाय को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वे नहीं कर सकते। फिर वर्नेस ने क्या किया है? इसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने की बजाय वे रूखे हो गए। परमेश्वर हमेशा ही धन्य है, हमारे पास उजाला है और तुम्हारे पास नहीं है। हम वे क्या करते हैं? उन्होंने इसे संगठित कर दिया। आप परमेश्वर को संगठित नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर भी बिना आकार के है। बाइबल ने कहा नहीं, परमेश्वर के विषय में कुछ भी रूपात्मक नहीं है। अब तब असेंबलीज ने उसे संगठित करने की कोशिश की और उन्हें उसे सच्ची कलीसिया बनाने की कोशिश की, और फिर वहाँ साथ ही वन्यस आ गया। उन्होंने उनको संगठित करने की कोशिश की और उनके पास अब और उजाला नहीं था। तो वे क्या करते हैं? उन्होंने इसे अपने खुद के स्वार्थ के द्वारा इसे बाहर कर दिया। उन्होंने इसके विषय में कड़वाहट के रास्ते को लिया। नमकीनपन और मिठास से इसे बांटने के बजाय उन्होंने दूसरों से संगति को तोड़ने की कोशिश की। उसके साथ कोई लेना देना नहीं और इसे ऐसा ही किया गया। उसके बाद ये आगे फैलने लगा था। पहली बात जो आप जानते हैं, एक और ऊपर आया, उन्हें यह मिला और अब वे टुकड़े हो गए। एक ने कहा वह एक सफेद घोड़े पर आ रहा है, दूसरा एक कहता है वह एक सफेद बादल पर आ रहा है। परमेश्वर धन्य हो, मैं यहाँ पर से एक संगठन को आरंभ करूँगा। देखा वे किस तरह से करते हैं? इसने लोहबान को फैलाया, इसने क्या किया? इसने भाईचारे को तोड़ दिया। बहुत से स्त्री पुरुष आज रात असेंबली ऑफ गॉड में यीशु मसीह के नाम में आकर और बपतिस्मा लेना पसंद करेंगे, यह जानते हुए कि यही परमेश्वर का सत्य है। उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा यदि उन्होंने ऐसा किया तो। और बहुत से वननेस वाले, अब मैं वननेस नहीं हूँ, मैं वननेस में विश्वास नहीं करता हूँ जिस तरह से वे करते हैं। मैं उस तरह से यीशु पर विश्वास नहीं करता जैसे वे कहेंगे यीशु। वहाँ पर बहुत से यीशु हैं, यह प्रभु यीशु मसीह है, ये सही है। अब और मैं नहीं, जो वे विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास उससे अलग है। वे यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं, नए जन्म के लिए यीशु के नाम में जो बपतिस्मा दिया जा रहा है, नए जन्म का जो आपके पानी के बपतिस्मा के लिए आपके अंदर मसीह को लाता है। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा के जरिए से यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया जन्म आता है, ये सही है। बपतिस्मा केवल एक बाहरी रूप से किया गया कार्य है, जो अंदरूनी रूप से जन्म का कार्य जो किया जा चुका है। देखा, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह सब ठीक बात है, लेकिन वे सारे मेरे भाई लोग हैं। जब मैंने पहली बार एक बैप्टिस्ट प्रचारक की नई आरंभ किया, वे मेरे पास आकर और कहते, भाई ब्रैनम, आप यहाँ पर आइए, हम इसे समझ गए और हमने इसका यहाँ पर पालन किया है। मैंने कहा न तो तुम में से एक ने भी, मैं ठीक दो झुंडों के बीच खड़ा होकर और कहता हूँ हम आपस में भाई हैं। मैं परवाह नहीं करता क्या यदि कोई मनुष्य असहमत होता है, तो मुझे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी मेरा भाई है। मेरा एक भाई है जो एप्पल पाई को पसंद करता है, मुझे चेरी सबसे अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसके साथ संगति करना नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी एप्पल पाई को खा सकता है और मैं अपनी चेरी पाई को खा सकता हूँ, और मैं मेरे पाई पर बछड़े के सार को छिड़कता हूँ यदि वो नहीं चाहता है तो, इसलिए वो इसे ले सकता है। आप ये जानते होंगे ये क्या है, मीठा किया हुआ पदार्थ वे उस पर डालते हैं, आप जानते होंगे मीठी क्रीम, मुझे ये पसंद है। अब बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ इसे खाकर, लेकिन यह एक, लेकिन मैं मुझे यही पसंद है। यदि वह इसे पसंद नहीं करता है तो वो इसे नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी खाऊंगा, लेकिन वह अब भी मेरा भाई है, यह सही बात है। और इसलिए मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं एक संगति को पसंद करता हूँ। लेकिन जब हम इस तरह की लकीरों को खींचते हैं और कहते हैं नहीं, यह हमारी संप्रदाय है, और वहाँ पर पहुँचकर और अगले व्यक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं और कहें परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, मेरे प्रभु, यही है जब आप इसे संगति कहते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आप उस कड़वाड़ की जड़ को लेते हैं, बस उसी तरह जैसे स्मुरना के लोगों के पास वहाँ पहले थी, और आपका अभिप्राय उसी बात से है तो ठीक है। इसलिए उनका नाम कड़वाहट था। निकोलियन ने अंधकार के युगों तक उनको बाहर ही रोके रखा। लूथर के युग ने अनुग्रह के उस पहले कदम को बाहर लाया। एक छोटा सा उज्याला चमकना आरंभ होता है, फिर उसके बाद आगे आता है पवित्रीकरण के साथ। जॉन वेस्ली आता है, थोड़ा और उज्याला बढ़ गया, और उसके बाद पेंटिकोस्टल के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, जो फिर से पिताओं के विश्वास की ओर वापस ला रहा है। लेकिन वे इसे इसी प्रकार से नहीं रख सके, इसलिए उन्हें इसे संगठित करना था, और तब उन्होंने ठीक निकोलियन में फिर से आरंभ कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जो बाइबल ने कहा कि वे ऐसा करते हैं। अब मुझे यहाँ देखना होगा, या मैं इसे लूंगा, बहुत ज्यादा समय को ले लिया। आइए दूसरे पद को लेते हैं, या जो आठवां नवा पद होगा, तो ठीक है। अब सतावट नौवा पद, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे क्लेश को, दरिद्रता को, लेकिन तू धनी है। ओह मेरे प्रभु, मैं अब वह कलीसिया से बात कर रहा है, सच्ची कलीसिया से, दूसरों से नहीं। उन्होंने निकुलियों के उन कामों से नफरत की, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। अब वे शिकायत कर रहे थे, वे गरीबी से त्रस्त थे, वे उन्होंने सब उनके पास से ले लिया था, जो कुछ उनके पास था, उन्होंने इस तरह से उनकी छोटी कलीसिया का निर्माण किया था, और ऐसा हुआ था कि वे इतने छोटे झुंड में थे, उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया था, बड़ी कलीसिया ने तब उन्हें बाहर निकाल दिया था। और इसने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें वहाँ कोने पर मिलना होगा, तुम्हें गली में मिलना होगा, या कहीं भी जो तुम मिल सकते हो, और मैं वहाँ तलघर में जा रहा हूँ जहाँ उन्हें मिलना होता है, वहाँ तलघर के नीचे जाकर और मिलना होता है, और जो वहाँ चीजें होती है, मैं तुम्हारे क्लेश को जानता हूँ और मैं तुम्हारी परेशानियों को जानता हूँ और इसी तरह से इत्यादि, लेकिन उन क्लेशों में से होते हुए तुम्हें धनी बनाया गया है। ओह मेरे प्रभु, मुझे बताओ कि किसी भी समय कलीसिया पर एक सतावट आती है तो यह इसे मजबूत बनाती है, यह हमेशा ही क्लेशों में होते हुए कलीसिया को मजबूत करती है। मैं तुम्हारे क्लेशों को जानता हूँ, लेकिन तुम धनी हो। क्यों? तुम मुझे थामे रहे हो, तुम धनी हो, लेकिन तुम्हारे क्लेश तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब वो, क्या आपने ध्यान दिया, निकुलियन को अब खुद के लिए एक आराधनालय मिल गया था। बाइबल ने यहाँ ऐसा कहा, क्या आपने इसे यहाँ नवे पद में देखा है, जहाँ जो नहीं लेकिन शैतान का आराधनालय है। सच्ची कलीसिया को बाहर कर दिया गया था, निकुलियों ने अधिकार को ले लिया था और उन्होंने लोगों को धक्का देकर निकाला जिनके पास पवित्र आत्मा था, तो इसलिए उनका उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। यदि स्मुरना एशिया में वे केवल जानते थे कि वे चीजें कि शहीदों का मुकुट उनके लिए रुका हुआ होगा, उन्हें हिलाकर रख दिया होता। देखा, अब दूसरे शब्दों में, क्या जब यह भविष्यवाणी लिखी गई थी और इसे आगे भेजा और कलीसिया ने इसे थामे रखा और उन्होंने देखा कि वे ही वे लोग हैं जिन्हें शहीदों का मुकुट पहनाया जाएगा, क्योंकि वे होंगे, क्यों? इसने उन्हें मौत से डरा दिया है, वे इसके लिए हर समय प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके युग में नहीं आया था। तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, आप जानते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि नबी गलत था, योन्ना गलत था, वह क्योंकि यह हमारे लिए यहाँ इस पुरना में नहीं हुआ, क्योंकि यह सैकड़ों वर्ष बाद होना था, समझे? लेकिन जब परमेश्वर कुछ भी बोलता है तो उसे पूरा होना है। यही है, हम अपने विश्वास को ठीक परमेश्वर के वचन पर डुबाते हैं। परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञा को रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हो सकता है सोचें कि इसे यही होना है, लेकिन हो सकता है ऐसा घटित होने के लिए परमेश्वर का वो समय नहीं है। लेकिन मेरा वचन मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये था वो पूरा होगा। परमेश्वर हमेशा ही उसके वचन का आदर करता है, और ये अपने खुद के अच्छे समय पर इसकी कटनी की जाएगी। सो यही वे लोग थे, वो पहली कलीसिया, लेकिन उस कलीसिया के विशेष गुण थे जो बाद में इस मुरना कलीसिया से बाहर आए। अब तब उन्हें शहीद का ताज पहनना था, उनमें से बहुतों को मार दिया जाना था। अब आइए उस दसवें पद को लेते हैं, जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, उन बातों से मत डर जो शैतान का आराधनालय है, जो दुख तुझको झेलने होंगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओह मेरे प्रभु, उन्हें कहा गया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब उन्हें उनके धर्म के लिए मर जाने के लिए बुलाया गया है। अब बहन वुड, आप जहाँ भी हैं, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको मदद मिलेगी। बहन वुड एक दिन मुझे बता रही थी, वह शायद इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि क्यों कुछ ही लोगों को छुड़ाया जा सका और अन्य लोगों को नहीं। कभी कभी आपको यह जानना पड़ता है, परमेश्वर ने इन लोगों से कहा, अब तुम इस विषय में मत डरना, क्योंकि शैतान तुम्हें वहाँ बाहर निकालने जा रहा है, क्योंकि यह निकुलियन का संस्थान है जो आकर और इसमें दबाव को डालते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे खातिर मरने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उस दिन पर जीवन का मुकुट दूंगा। तो नहीं, अब देखो, उसने कहा, अब यदि आप ध्यान दें, जैसा कि हम इस दसवें पद को पढ़ते हैं, मुझे इसे फिर से पढ़ने दें। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, लेकिन तब तक विश्वासी बना रह। आपने ध्यान दिया कि तब तक ना ही मृत्यु तक, लेकिन मृत्यु होने तक। आपने से समझा, प्राण देने तक विश्वासी रह, समझे? और उन्होंने किया था। अब उसने कहा, शैतान, आपने ध्यान दिया, वह जिसे वर्ग में रखा गया, उस एक इनाई जो उसे कर रहा था। अब यह शैतान का आराधनालय निकलियो था, हम यह जानते हैं, क्या ऐसा नहीं था? तो यह एक संगठन था, एक याजकगण जो ऊपर आ रहा था, जो इन लोगों को कष्ट देगा, जो इन लोगों को कष्ट देगा, और वे सुसमाचार के प्रति वफादार बने हुए थे मृत्यु होने तक। क्या आपने विवाह के समारोह में ध्यान दिया? नहीं, जब तक मृत्यु नहीं आती हम भागीदार हैं, लेकिन मृत्यु होने तक हम भागीदार हैं, समझे? अब होने तक और जब तक भिन्न है। अब उन्हें मसीह के प्रति वफादार होना था मृत्यु होने तक। इसके साथ ठीक मृत्यु तक चले जाओ, डर मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक मुकुट को दूंगा। अब यह 10 दिन की वे यहाँ पर बात करते हैं, 10 दिन बाइबल में एक दिन एक वर्ष को प्रतिनिधित्व करता है, और 10 दिन ये बीते DIOCLETAN डायोक्लेटियन के शासन काल के अंतिम 10 वर्ष थे। डायोक्लेटियन वह बड़ा सम्राट था जिसने अंतिम शासन किया था। तो ठीक है, इफिशियंस कलीसिया के युग के दौरान बहुत से सम्राटों ने शासन किया, और नीरो, मैं सोचता हूँ कि वो एक था। ये यहाँ पर डायोक्लेटियन वो एक अंतिम है जिसने शासन किया अंतिम के 10 वर्ष में, और वह उन सभी में से सबसे खूनी सताने वाला था। वो केवल इस समूह के साथ पक्ष में रहता, और उन्होंने मसीहों की हत्या कर दी और उन्हें मार डाला, उन्होंने उन्हें जला दिया, उन्होंने हर एक चीज को किया था, और ये 10 वर्ष सबसे खूनी सतावट के वर्ष थे। और उसका समय और उसका शासन काल 302 से 312 तक था। इसने स्मुरना युग को समाप्त किया था कॉन्स्टेंटाइन के आदेश को जारी करने के साथ, और वह 312 पर आता है। कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा किया, वह क्लेश के 10 दिन थे, और ये नीरो के साथ आरंभ हुआ और डायोक्लेटियन के साथ समाप्त हुआ, और ये नीरो में आरंभ हुआ जो लगभग एडी 64 था, जब नीरो सिंहासन पर बैठा। अब 11वां पद एक प्रतिज्ञा है, अब हम इसे बंद करने से पहले लेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अब मेरे पास यहाँ कुछ कहने के लिए है, यह आदेश है। यदि मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे हृदय में और इसे नहीं कहता हूँ, तो मैं एक ढोंगी हूँ। देखा, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें जो इस वचन में यहाँ कुछ तो है, और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए लंबे समय तक सबसे बड़ी पहली में से एक था, जब तक मुझे मिल नहीं गया। आइए अब इसे बहुत ही नजदीक से अभी पढ़ते हैं, समझे? जिसके कान हो, दूसरे शब्दों में सुनने के लिए कान हो, देखें, ये आत्मा के लिए खोले, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब देखिए इसी बात को, यह सतावट और हर एक चीज के लिए आती है, इसका हर एक भाग हर कलीसिया में उसके ऊपर साथ साथ आगे जाता है। वो कलीसियाएं, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए, कौन सी कलीसिया? इफिसुस की, जी हाँ, तो ठीक है, स्मुरना, जी हाँ, उनमें से सभी को जो जय पाए, सभी कलीसियाओं में उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। वह जो लौतकिया कलीसिया में है वह किस पर जय को पाता है? निकलिनियों पर जय को पाता है, संसार की चीजों पर जय पाता है, इन संप्रदायों पर जय पाता है, इन याजक गणों पर जय पाता है, संसार की हर एक चीज पर जय पाता है और बेच देता है और मसीह से प्रेम करता है। तुम्हारी दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी, क्यों? उसे अनंत जीवन मिला है, अनंत जीवन मर नहीं सकता। यीशु ने कहा, वो जो मुझसे सुनता है उसमें अनंत जीवन है, वह कभी नहीं मरेगा, मैं उसे अंतिम दिन में उठ खड़ा करूंगा। अब आप बहुत से लोग इसके साथ असहमत होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही गहराई से सोचें, इससे पहले आप अपने निर्णय को लें, समझे? मैं अब कुछ तो कहने जा रहा हूं। यही कारण है कि मैं विश्वास नहीं करता कि वहाँ एक अनंत नरक है। वहाँ एक अनंत नरक नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वहाँ कभी एक अनंत नरक था, तब हमेशा ही एक अनंत नरक होता था, क्योंकि अनंत अनंत जीवन का केवल एक रूप है, और यही है जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और आप हमेशा के लिए जलेंगे और अनंत काल के लिए, तब तो आपके पास अनंत जीवन का जलना होगा, और फिर तो ऐसा था परमेश्वर का जलना होगा। आपके पास अनंत नरक नहीं हो सकता है, और बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि नरक की सृष्टि की गई थी, और यदि इसकी सृष्टि की गई है तो यह अनंत नहीं है। जो कुछ भी अनंत है तभी भी सृष्टि नहीं की गई, यह हमेशा से था, यह अनंत है। और बाइबल यह कहता है नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए सृष्टि किया गया था, नरक की सृष्टि की गई थी, यह अनंत नहीं है। और मैं विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति को अनंत काल के लिए दंडित किया जाएगा। मैं यह विश्वास करता हूँ कि बाइबल स्पष्ट रूप से यह बताता है कि वह जो जय पाता है उसकी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। अब मृत्यु, वो मृत्यु, यह शब्द अलगाव से आता है। अब जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, पाप में हम मर चुके होते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, हम वंचित हो गए हैं, हम पाप और अपराधों में मर चुके हैं, हम परमेश्वर के लिए और उसके गणराज्य के लिए एक परदेसी हैं। और फिर जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं और हमारे पास अनंत जीवन होता है, हम उसकी संतान और उसका एक भाग होते हैं। वहाँ मेरा छोटा बेटा जोसेफ मेरा एक भाग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वह जो भी करे, वह मैं हो सकता है वो नहीं। यदि मैं एक बड़ा धनवान व्यक्ति होता था तो मेरे पास बहुत सी विरासत होती थी, वह हो सकता है, वह यहाँ तक हर किसी चीज का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन अब भी वो एक पुत्र है, वह मेरा भाग है, यकीनन वह मेरा भाग है। अब मैं कभी भी उसका इंकार नहीं कर सकता हूँ, तब तो मैं खुद का इंकार कर सकता हूँ, क्योंकि वह मेरा भाग है। लहू के प्रशिक्षण से पता चलता है कि वह मेरा है, देखा, और लहू के प्रशिक्षण से पता चलता है कि आप परमेश्वर के हैं या नहीं, समझे, आप परमेश्वर की संतान हो और आपके पास अनंत जीवन होता है। लेकिन जो प्राण पाप करता है वह प्राण अलग किया जाएगा, क्या यह सही है? तो यह अब और नहीं रहेगा। अब देखिए, कुछ भी जिसकी एक शुरुआत थी उसका एक अंत है, क्योंकि कोई भी चीज जिसकी एक शुरुआत है उसकी एक सृष्टि हुई है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि नहीं की गई थी, वह हमेशा ही परमेश्वर था। वहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है कि उसकी सृष्टि हुई थी, वहाँ केवल एक ही जरिया है कि हमारे पास कभी अनंत जीवन हो सकता है, वो ये है कि हमें उस सृष्टि का भाग बनना है। महिमा, ओह यदि हम इसे देख सकते थे, देखा कि पवित्र आत्मा आपके लिए क्या करता है, यह पवित्र आत्मा है, सृष्टिकर्ता, वो खुद परमेश्वर, वो पिता एक आत्मा के रूप में है, जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह देह पर था जिसे यीशु कहा गया, उसका पुत्र, कि उसने यीशु की सृष्टि की, यही वो कारण है इसे मरना पड़ा था। परमेश्वर ने मनुष्य के देह में वास किया और लहू की कोशिका फूट निकली और लहू की कोशिका से जीवन वापस आ गया। यही वो कारण है कि वे पुराने नियम में पुराने आराधना करने वाले वे दूर नहीं जा सकते, वह उसी निंदा के साथ चला गया जो उसके पास थी जब वो आया। लेकिन नए नियम में इब्रानियों में कहा कि आराधना करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। अब पुराने नियम में उन्होंने एक मेमने को लाया, उसने इसे नीचे रखा, उसके ऊपर हाथ को रखा, वो आराधना करने वाले याजक गले को काटता है, वह लहू के बहने को महसूस करता है और उसके मिमियाने को सुनता है और यह मर जाता है, और वो महसूस करता है उसका छोटा सा शरीर ठोस हो चुका है और यह मर चुका होता था। वह जानता था कि ऐसा उसे होना चाहिए था, मेमने ने उसका स्थान लिया है। याजक लहू को लेता है, इसे वेदी पर रखता है और धुआं ऊपर की ओर जाता है, और ये एक क्षमा की प्रार्थना थी उसके लिए, और उस जानवर का जीवन एक मनुष्य के ऊपर आकर और मनुष्य की आत्मा के साथ मेल नहीं खा सकता है, क्योंकि ये जानवर की आत्मा है। जानवर का जीवन और मनुष्य का जीवन ये इसे नहीं कर सका। लेकिन जब एक, यही वो कारण है कि वह वही पाप करने की उसी इच्छा के साथ बाहर निकल जाता है, वही चीज को करता है, वह विचार करने पर वो अंदर आता है और उसके बलिदान को भेंट करता है और उसी बात को उसके मन में लेकर वापस बाहर जाता है, यह सही बात है। लेकिन यहाँ जब आराधना करने वाले, ओ चर्च ऑफ गॉड, इस बात को लेने से चूकना मत। वो आराधना करने वाले एक बार सही मायने में परमेश्वर का पुत्र चलकर जाता है और विश्वास के द्वारा उस पर अपने हाथ को रखता है। ओह मेरे प्रभु, वहाँ उसके चेहरे की ओर देखता है, वो थूक उसके चेहरे पर लटक रही होती है, लहू उसके चेहरे पर से नीचे बह रहा होता है। दर्द को महसूस करते हुए, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ओ भाई, जब आप देखते हैं कि आपके लिए क्या ही वो दाम आपके लिए मरा, और ये कौन था? इमैनुएल, परमेश्वर आपके स्थान पर मर रहा है। उसके बाद क्या होता है? तब आराधना करने वाले, जब वो लहू की कोशिका उस परमेश्वर के पुत्र के अंदर फूट निकलती है, उस लहू की कोशिका ने क्या बनाया? आप क्या हैं? आप एक छोटी कोशिका हो जो आपके पिता से आती है। स्त्री के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो स्त्री केवल अंडे को उत्पादन करती है, अंडे सेने की मशीन, उसे तो वो अंडे को सेन कर तैयार करना होता है। लेकिन लहू पुरुष से आता है, यही वो कारण है कि वो बालक पिता के नाम को लेता है, और फिर लेकिन एक पुरुष से विवाह करने वाली महिला उसके नाम को लेती है बच्चों के कारण। वह बालक के लिए अंडे सेने की मशीन बनती है जो वह उस पुरुष के लिए जन्म देगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक मुर्गी एक अंडे को दे सकती है, लेकिन यदि वह किसी नर पक्षी के साथ नहीं रही है, इस अंडे में से बच्चे नहीं निकलेंगे। यही है, मैंने कहा, यही वो कारण है कि आज हमारे पास बहुत सी पुरानी ठंडी औपचारिक कलीसियाएं हैं। वे इन निकोलियन के विचार पर चले गए हैं। उनके पास सड़े हुए अंडों से भरे हुए घोंसलों का एक झुंड है, और वे अंडे कभी भी बच्चे नहीं सींचेंगे, क्योंकि वे कभी नहीं। आप उनसे कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें बिशप, डीकन और जो कुछ भी सब कहें, वे कभी भी विश्वासियों के पीछे पीछे जाने वाले चिन्हों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे कभी भी नर के साथ नहीं रहे हैं। यीशु मसीह, यदि आप कभी भी उस परमेश्वर की सामर्थ्य के उस नर के साथ गर्भाधान हुए हैं, जब वो लहू की कोशिका वहाँ उस क्रूस पर फूट निकली थी, और वो जीवन है जो उसमें था, नन्ना सा यहोवा, ओह ये असाधारण सा लगेगा। आप जानते हैं, हर एक जन एक चिन्ह के लिए देख रहा है, क्या वे नहीं देख रहे हैं? हर कोई कहता है, ओह मुझे एक चिन्ह को दिखाएं। यहूदी ने कहा, मुझे एक चिन्ह को दिखाएं, मुझे आपको एक चिन्ह देने दो। परमेश्वर ने आपको एक बार चिन्ह दिया, उन्होंने एक चिन्ह को मांगा, इसराइल ने एक चिन्ह को मांगा, उसने नबी को बताया, मैं तुम्हें एक सनातन का चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, आमीन, उसे इमैनुएल कहा जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ। अब तक का सबसे बड़ा चिन्ह जो कभी दिया गया था, जब परमेश्वर जो आकाश और धरती का सृष्टि करता है, सौर मंडल को बनाया, वहाँ माउंट पोलामोर पर खड़े होकर और उस दायरे में से होते हुए उस ओर देखे, और आप 120 लाख वर्षों के अंतरिक्ष के प्रकाश को देख सकते हैं, वहाँ उस मीलों को पार करते हुए, और उस पार अभी भी चांद है और तारे और दुनिया है, और उसने उन सबको बनाया, बस उन्हें अपने हाथों से इस तरह से फैलाया। जी हाँ, और वह महान सृष्टिकर्ता मेरा उद्धारकर्ता बन गया, एक छोटे से लहू की कोशिका में नीचे आता है, ना ही एक पुरुष के जरिए से, लेकिन एक महिला में कुआरी के पास आता है, और इस छोटे से पराग को महिला से लेता है, और खुद के लिए एक छोटे से घर को बनाता है और उसमें रहने लगता है। ओह ये असाधारण सा लगेगा। यहोवा खलियान में खाद के ढेर के ऊपर रोता हुआ यहोवा, भूसे की एक चरनी में, यह एक सनातन का चिन्ह है, इसमें से कुछ बड़े सिर वाले लोग हैं। यहोवा परमेश्वर एक रोता हुआ बालक, हालेलुया, एक बदबूदार चरनी में, और फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ तो हैं, अपनी नाक को बंद किए हुए बारिश होगी या तुम्हें डुबा देगी, और फिर आगे सोचना कि आप कुछ तो हैं, और यहोवा चरनी में पड़ा हुआ है, एक गोबर के खाद के ढेर के ऊपर, एक छोटे से किसी भी बच्चे की तरह वो रो रहा है, यह असाधारण सा लगेगा, यह एक चिन्ह है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक सनातन का चिन्ह दूंगा, यही एक वास्तविक चिन्ह है। यहोवा एक लड़के की नाई खेल रहा है, यहोवा एक दुकान में काम करते हुए एक बड़ई की तरह लकड़ी को चीरने का कार्य करता है, हालेलुया, मेरे प्रभु, ओह यहोवा मछुआरों के पैरों को धो रहा है, मैं तुम्हें एक चिन्ह को दूंगा। ओह लेकिन हमारे पास ऐसा होने के लिए एक याजकगण होना है, आप जानते होंगे, पोशाक के साथ और पूरी तरह से फीता डाले हुए, कॉलर और समझे, ओह मैं तुम्हें एक सनातन का चिन्ह दूंगा। यहोवा वहाँ आंगन में खड़ा था, उसके मुंह पर थूक लगी हुई थी। यहोवा आकाश और धरती के बीच एक शरीर में खींचा हुआ नग्न, उसने क्रूस की लज्जा को तिरस्कृत किया। हमारे पास वहाँ उसकी मूर्ति है जिसके चारों ओर कुछ छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लिपटा हुआ है। बेशक ऐसा तब उस मूर्तिकार ने किया है, उन्होंने उसे नंगा कर दिया था, उसे शर्मिंदा किया। ओह वो पखंडियों का झुंड, जब वह घड़ी आती है, यह मनुष्य का दिन है, प्रभु का दिन आ रहा है। यहोवा यहोवा मरता हुआ, जी हाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहोवा प्रार्थना कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये सही है, यह असाधारण सा लगेगा, यह एक सनातन का चिन्ह है। यही वो चिन्ह है जो सारे मनुष्य जानते होंगे। तब वह मर गया, यहोवा मर गया, तब धरती हिलने लगती है। ओह मेरे प्रभु, तब वह कब्र से जी उठा और ऊंचे पर चढ़ गया। यहोवा अपने लोगों के बीच अपने कलीसिया में रहने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में वापस आ रहा है। महिमा हो, यहोवा कलीसिया में होते हुए चल रहा है, मन के विचारों को जांच रहा है। यहोवा बीमारों को चंगा कर रहा है। यहोवा होठों के जरिए से बोल रहा है, इतना तक कि मनुष्य का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहोवा अंग्रेजी में वापस आकर और इसका अनुवाद कर रहा है। क्या आप एक चिन्ह को चाहते हैं? आमीन। वो यहोवा उस एक वेश्या के लिए नीचे उतर कर आया, उसे उठाकर खड़ा करता है, जहाँ पर वो इतनी गिरी हुई थी कि कुत्ते तक उसे नहीं देखें, और उसे धोकर बर्फ के नाई सफेद करता है, और उसे एक सोसन के फूल की नाई शुद्ध करता है। ओह मेरे प्रभु, यहोवा गली में पड़े हुए एक शराबी को लेता है और पूरी तरह से उसके मुंह के ऊपर गंदगी पर मक्खियां भिन भिनाती हैं, और उसे सुसमाचार को प्रचार करने को लगाता है। यीशु मसीह का लहू हमें साफ करता है। जब वह धरती पर था तो वह वहां सबसे गिरे हुए नगर में चला गया था, और वहां पर सबसे गिरे हुए लोग थे, और वे उसे सबसे गिरे हुए नाम को देते थे। ये सही बात है, उन्होंने उसके साथ सबसे बुरा व्यवहार किया और उसे सबसे गंदे नाम से बुलाया, जिसे बाल जबुल कहा जा सकता है, एक शैतान, सबसे गिरा हुआ नाम जो वे उसे दे सकते थे, मनुष्य ने उसे दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया और वो उसे सबसे ऊंचे स्थान पर उसे एक सिंहासन को देता है। इतना तक स्वर्ग की ओर देखने के लिए उसे नीचे देखना होता था। आमीन। महिमा, और उसे हर एक नाम के ऊपर एक नाम को देता है जिसका स्वर्ग में और धरती पर उल्लेख किया गया है, और स्वर्ग और धरती का सारा परिवार का नाम उसके बाद आता है। यही है जो मनुष्य ने उसके विषय में सोचा, यही है जो परमेश्वर ने उसके विषय में सोचा। हे परमेश्वर, मेरे विचार आपके विचार की तरह हो। पिता जी हाँ श्रीमान, वो बहुमूल्य नाम। अब वह जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। अब यदि वहाँ अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है और आप इसे प्राप्त करते हैं, और हम यीशु मसीह के जरिए से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, यही वो परमेश्वर का जीवन है। फिर जब लव की कोशिका परमेश्वर के पुत्र पर फूट निकली थी, और वो छोटा सा यहोवा जिसे इस मनुष्य के अंदर भरा गया, जिसे यीशु कहा गया, जब उसमें परमेश्वर के देह की परिपूर्णता वास करती थी, और अब जब हम हमारे पापों की क्षमा के लिए उस लोगों को स्वीकारते हैं, वह आत्मा जो किसी मनुष्य पर नहीं थी बल्कि परमेश्वर पर, महिमा हो। बाइबल ने कहा परमेश्वर का लहू। किसी ने कहा आपको याद है वह यहूदियों के बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि वह एक यहूदी था। वह यहूदी नहीं था, वह न तो यहूदी था और न ही अन्य जाति था, वह परमेश्वर था। यह सही है, वह एक सृष्टि किया हुआ लहू था। परमेश्वर ने इसे विशेष करके बनाया, यह उसका अपना था, और उस लहू के जरिए से हम इसे अपने क्षमा के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए मृत्यु को मरा। वो लहू की कोशिका फूट निकली, उस पवित्र आत्मा को आजाद करता है ताकि हम वापस आएं, और अब आत्मा के जन्म के जरिए से हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। तब वो जीवन जो परमेश्वर का है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं या ना ही कभी भी उसका एक अंत होगा, यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो जीवन मेरा और आपका है, वहाँ पर आप हो। अब नरक, हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर वापस जाएंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक जलते हुए नरक में विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, बाइबल ऐसा कहता है, आग की झील। अब लेकिन यह ऐसा नहीं हो सकता है, यह एक अनंत नहीं हो सकता। यह हो सकता है, बाइबल कभी नहीं कहती है यह अनंत है, यह कहता है सनातन के लिए नरक, अनंत शब्द को ना कहें। यह कहता है एक सनातन के लिए नरक, अब यह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, एक सनातन का नरक, ना ही एक अनंत। अब बाद में वो प्राण ऐसा करने पर वहाँ पर 1 करोड़ वर्षों के लिए उत्पीड़ित किया जा सकता है, जितना मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की दृष्टि में सनातन इतना हो सकता है। यह 5 मिनट के लिए हो सकता है, यह हो सकता है 10 लाख वर्ष हो, यह हो सकता है 1 करोड़ वर्ष के लिए हो, लेकिन वहाँ एक समय आएगा जब उस प्राण का अंत होना है। यहाँ बाइबल ने कहा है, देखो देखना, वह जो जय पाता है उसकी दूसरी मृत्यु से हानि न होगी। पहली मृत्यु हमारे प्रियजनों से अलग करती है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, कभी भी उसकी उपस्थिति से बाहर आने के लिए नहीं, समझे। अब यदि वहाँ एक दूसरी मृत्यु है तो ये मृत्यु प्राण के लिए होगी। और फिर जो संसार पर जय पाता है या संसार की चीजों पर जय पाता है, उसके पास अनंत जीवन है और दूसरी मृत्यु उसे नहीं छुएगी। वहाँ पर आप हैं अनंत जीवन। लेकिन वो पापी, बाइबल ने कहा, वो स्त्री जो भोग विलास में जीवित है जबकि वो मृत है, यह सही है। वो प्राण जो पाप करता है वो निश्चय ही मर जाएगा। मरना क्या है? पूरी तरह से अलग होना, अब नहीं रहा, समझे। अब ये कट गया है, यह सही है, यह कट चुका है, अब ये इसके लिए अब और नहीं रहा। इसे लेने के लिए यह कितना समय लेगा? यह इसकी अंदर आने की उसी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा और यह एक स्थान तक आएगा, इतना तक कि वहाँ कभी भी इसका कुछ भी नहीं बचेगा। यह बस वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से इसे कभी बनाया गया था। हम कोशिका को ले सकते हैं और कोशिका से एक कोशिका फूट निकलती है दूसरे कोशिका के लिए, जब तक आप पहली कोशिका पर नहीं आ जाते हैं, उस कोशिका के अंदर फूट निकलती है, तब आपके पास लहू का रसायन विज्ञान होता है। आप लहू के भिन्न भिन्न रसायन शास्त्रों में आते हैं और फिर आप उस कोशिका में एक छोटे से हिस्से में आते हैं, यही जीवन है। वे इसे नहीं पा सकते हैं, वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब वो जीवन अंत में उस एक स्थान पर आ जाता है जब तक ये और अब नहीं रहता है, जो अब भी उस जीवन का रसायन शास्त्र है। मैं इसे विश्वास नहीं करता इसका कोई भी रसायन शास्त्र है, ये आत्मिक होगा और फिर उसमें अंत में यह पूरी तरह से अलग हो जाएगा, अब और नहीं रहेगा। यही है जो बाइबल ने कहा, जो प्राण पाप करता है वह मर जाएगा, और वे जो यहाँ इन कलीसिया के युगों में जय को पाते हैं उनकी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। पहले शरीर मरता है, उसके बाद अगला प्राण मरता है और यह अब और नहीं रहेगा, समझे। यह है, क्या आप विश्वास करते हैं कि यही है जो बाइबल ऐसा कहती है? अब याद रखना, यदि नरक अनंत है तब तो बाइबल गलत होती है, जबकि इसने कहा कि नरक को बनाया गया था। और फिर यदि एक मनुष्य को नरक में अनंत काल के लिए जलाया जाएगा, तब ऐसा होने के लिए उसके पास जागरूकता के लिए अनंत जीवन होना है, जिससे कि वो जले। क्या यह सही है? तो ठीक है, अनंत जीवन के वहाँ कितने रूप हैं? एक, यह सही है, बस एक ही अनंत जीवन है। अब यहाँ से दूर जाकर और मत कहना, भाई ब्रैनम नरक में विश्वास नहीं करते। भाई ब्रैनम नरक में विश्वास करते हैं, बाइबल सिखाती है कि वहाँ एक नरक है, बस उतना ही पक्का है जितना वहाँ पर एक विश्राम के लिए स्थान है, वहाँ पर दंड का स्थान है। और परमेश्वर निश्चित रूप से एक प्राण को बनाएगा जो उसके विरुद्ध पाप करता है, उसे दंडित किया जाएगा और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करने के लिए आपको निश्चित रूप से इसके लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन वहाँ एक समय होगा जब आप अब और नहीं रहेंगे, लेकिन आपके लिए कितने लाखों वर्ष लेगा कि आप उसके लिए वापस जाएं, मैं नहीं जानता। लेकिन किसी दिन आप एक समय के जीव हैं, जब तक आप फिर से जन्म नहीं लेते हैं तब आप एक अनंत जीव होते हैं, और केवल एक ही तरीके से आप इसे पा सकते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का भाग होना है अनंत जीवन होने के लिए। क्या आप इसे देख सकते हैं? निश्चय ही, वो जिसके पास कान है वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? मैं अनंत जीवन होने के लिए बहुत ही खुश हूँ, यह मुझे अब और चिंतित नहीं करता है, क्योंकि अब हमारे पास अनंत जीवन है और मैं ये जानता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ कि यह हर किसी के पास होगा, हम सबके पास। इरेनियस, जी हाँ, मेरे पास इरेनियस के बारे में कुछ लिखा हुआ था इस इतिहास को पढ़ने पर। वो कारण इरेनियस को चुना गया था क्योंकि उसके पास पेंटिकॉस्टल मूल कलीसिया के चिन्ह थे, जो उसके पीछे पीछे थे। अब यदि परमेश्वर, कितने लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया पेंटिकॉस्ट में आरंभ हुई तो ठीक है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट पर कलीसिया का समर्थन किया तो ठीक है श्रीमान। फिर यदि वो परमेश्वर की पहली कलीसिया थी और यही है जिसे उसने कलीसिया कहा और वह अब दाखलता है, तो हम वो डालियां हैं। यदि दाखलता कभी दूसरी डाली को लाती है तो ये क्या होगी? पेंटिकॉस्टल। जी हाँ, अब हो सकता है नाम से नहीं अभी हमारे पास पेंटिकॉस्ट के नाम हो, लेकिन यह अब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल से अधिक और कुछ नहीं है। इस चीज का कोई मतलब नहीं है। देखो, यह तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन जब तक आपको आपके हृदय में एक पेंटिकॉस्टल का अनुभव नहीं मिलता है, आपके प्राण में एक पेंटिकॉस्ट आपको अनंत जीवन देते हुए, तब परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है कि आपको दूसरी मृत्यु से कभी भी छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है और दूसरी मृत्यु से कभी भी छुआ नहीं जा सकता है। देखा, आपके पास, आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, आप इसे शोकित मत करो, उन चीजों को करते हैं जो गलत है। यदि आप करते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा, क्योंकि बाइबल ने कहा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जिससे तुम्हें तुम्हारे छुटकारे के दिन तक मोहर बंद किया गया है। क्या यह सही है? पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। ओह, ये एक अद्भुत दिन होने जा रहा है किसी सुबह को, इनमें से किसी समय पर, आपको ये दिखाने के लिए कि पुनरुत्थान विश्वव्यापी होने जा रहा है। दो जन एक खेत में होंगे और मैं एक को ले लूंगा, और दो जन बिस्तर में होंगे और मैं एक को ले लूंगा। देखो, ये एक स्थान पर एक रात है और धरती के दूसरे छोर पर दिन का उजाला है। एक विश्वव्यापी पुनरुत्थान होगा, वो रैप्चर। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और इनमें से हरेक इस छोटी सी कलीसिया के यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ तक कि ये छोटा सा झुंड जो वहाँ से होकर गया है और यहाँ, यहाँ, यहाँ बाहर आता है। जब वह कुवारी जब उसने सातवीं घड़ी में देखा कि, अब याद रखना, वहाँ सात कुवारियाँ थी, क्या ये सही है? या मेरा मतलब है, पांच कुवारियाँ बाहर निकली, दस कुवारियाँ प्रभु से मिलने के लिए बाहर निकली, पांच समझदार थी और पांच मूर्ख थी, क्या ये सही है? और अब घड़ियों में, हालांकि वहाँ सात घड़ियाँ थी और सातवीं घड़ी के अंत में कुछ इस घड़ी से सो गई, यह एक और वह सातवीं घड़ी, वहाँ एक आवाज आने लगी, देखो दूल्हा आता है, उससे मिलने के लिए चलें। और वे उठ गईं और उनके दिए की बाती को ठीक किया और ये सभी लोग यहाँ से होकर उठे। ओह, यह एक अद्भुत समय नहीं होगा? ओह, हम हमेशा ही एक छोटा सा गीत गाते थे,
It's a wonderful time for you, what a wonderful time for me, if we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम गा सकते हैं।
A wonderful time for you, a wonderful time for me, if we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
क्या ये अद्भुत नहीं होगा? ओह, ये क्या वहाँ अद्भुत नहीं होगा? सहन करने के लिए कोई बोझ नहीं है, आनंद से गाते हुए हृदय की घंटियाँ बजने के साथ, ओह, ये क्या वहाँ अद्भुत नहीं होगा? आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप घर पहुँचेंगे? कितने लोग जानते हैं कि आप उस दरवाजे से बाहर जाएंगे? आप नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं यदि आप बाहर जाते हैं फिर से अंदर आएंगे? आप बता नहीं सकते। इसलिए इस रात को चूकने मत दो, आप इस रात को परमेश्वर को मत चूकना, क्योंकि यह हो सकता है कि यह अंतिम रात हो जो कि आपके पास एक समय या एक मौका होगा। आप कौन हो? जो कुछ भी हो, आप कहाँ से आए? आप कहाँ जा रहे हो? दुनिया की एकमात्र पुस्तक आपको बता सकती है कि यह क्या है। क्या यह यहाँ पर धन्य पुरानी बाइबल है? और यही वो बाइबल है जिस पर हम विश्वास करते हैं, यही वह परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। और यदि आप उस दुल्हन के अंदर नहीं हैं, इस जरा सी संख्या के छोटे से झुंड में, वहाँ से होते हुए यहाँ तक आज संस्था और संप्रदायों और इत्यादि के द्वारा बाहर निचोड़े गए और इत्यादि, यदि आप उस छोटे से झुंड में नहीं हैं, अब आपको इस भवन के साथ नहीं जुड़ना है, आपको किसी के साथ भी नहीं जुड़ना है, आपको बस उस राज्य के अंदर जन्म लेना होगा। अब यदि आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन में आपकी संगति को चाहते हैं, जहां कहीं भी आप इसे चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। देखिए, आप अपनी संगति को किसी के साथ भी रखना चाहते हैं, आप रखें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आप जानते हैं, एक समान पंख के पक्षी, ओह, किसी ने मुझसे एक बार पूछा, भाई ब्रैनम आपने उन लोगों को बताया मेथोडिस्ट कलीसिया में वापस जाओ? मैंने कहा यकीनन, उन्हें उन लोगों को बाहर फेंकने दो और उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो फिर हम देखेंगे। यह ठीक बात है, वापस जाते हैं, यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। आप देखना, यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, वे ठीक फिर से वापस आ जाएंगे। आप जानते हैं, एक समय नूह के जहाज में वो सुरक्षा का स्थान था। नूह वहाँ एक बड़ी बाढ़ आई थी और तो नूह ने कौवे को जहाज से बाहर कर दिया और वो बस कांव कांव करके बाहर निकल गया और इधर उधर देखता रहा, क्योंकि वह संतुष्ट था, क्योंकि वह आरंभ से ही एक दरिंदा था। वह एक मरे हुए लोथ पर से उड़ सकता था और इस एक खच्चर से पेट भर के खाता और इस एक पुराने भेड़ पर जाता और उसे खाकर अपने पेट को भरता और कहीं तो और जाता, जहाँ कहीं भी इस तरह का वो पुराना मरा हुआ लोथ यहाँ वहाँ पड़ा रहता। सो कौवा वहीं पर बैठ जाएगा और यहाँ वहाँ कांव कांव करेगा। लड़के, मैं पूरी तरह से अपने आप में एक जुबली को बना रहा हूँ, बस कांव कांव करते दूर चला जाता। लेकिन जब उसने छोटे से पिंडुक को बाहर छोड़ा तो वह एक अलग स्वभाव का था, वो बदबू, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। क्यों? एक पिंडुक के पास कोई पित्त नहीं होता है, वह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पास पित्त नहीं होता है, वह इसे पचा नहीं सकता। इसलिए केवल एक चीज जो वह कर सकता था, वह सीधे जहाज पर वापस जाकर या दरवाजे पर पीटता। बस जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हैं जाएं, केवल एक चीज जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ, केवल राज्य के अंदर आ जाएं। और मैं जानता हूँ कि आप कहाँ जाएंगे, आप इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाई, आप कहेंगे मैंने अलगाव करने वाली रेखा को पार किया है, मैंने अब इस संसार को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ श्रीमान, यह तो पक्का है।
They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Aren't you? नहीं है?
One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
उसके लिए आज की रात कितने लोग खुश हैं, ओ मेरे प्रभु।
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad.
अब जबकि हम इस अगले पद को गाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हाथों को मिलाएं, जैसे आप हर रात को करते हैं, सारे मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और पेस्पिटेरियन से एक दूसरे के साथ हाथों को मिलाएं, और यहाँ तक मित्रता पूर्ण एक दूसरे के लिए बस च्युइंगम चबाना, यदि आप कर सकते हैं तो। अब बस वास्तविक बने, सच्ची मित्रता पूर्व मिलनसार, अब जबकि हम इसे गाते हैं।
Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
अब आइए वास्तव में इसे गाएं। क्या आप इस पुरुणा के लोगों के साथ उनके लिए शहीद होने की इच्छा को रखते हैं? यदि ये बात उस स्थान पर आती है कि आपको मौत का सामना करना पड़े या इससे पीछे हटना पड़े, तो क्या आप इसका सामना करेंगे? जी हाँ श्रीमान, हे परमेश्वर, यह एक खुशी की बात होगी। जी हाँ श्रीमान, इसी तरीके से मैं जाना चाहता हूँ, ठीक पुलपिट में। यह सही है। मैंने सोचा कि मैंने इसे समझ लिया और ज्यादा समय नहीं हुआ, वे इसे जर्मनी में इसे पकड़ने जा रहे थे। ओह, वे मुझे एक रात की दूरबीन के जरिए से गोली मारने जा रहे थे और जर्मन सैनिक मेरे पास दौड़कर आए थे और इस तरह से पीछे से मुझे पकड़ लिया। मैंने सोचा क्या ही ये अद्भुत बात होगी कि ठीक यहाँ पर मेरे प्रभु के लिए रणभूमि पर मरना। ओह मेरे प्रभु, क्या ही अद्भुत बात है। ठीक है, मैं आपके लिए एक छोटा सा गीत गाऊंगा। क्या मैं गा सकता हूँ? क्या आपके पास समय है इस एक छोटे से गीत के लिए? तो ठीक है, मैं इसे नहीं गा सकता, मैं इसे बोलूंगा। ओह, मैं हमेशा से गाना चाहता हूँ और इन दिनों में से किसी एक दिन जब आप वहाँ ऊपर अपने सुंदर से बड़े घर पर वहाँ स्वर्ग में होंगे, वहाँ बहुत दूर, वहाँ नीचे जंगल के अंत में, वहाँ रसेल क्रिच और मैं इस शिकार पर होंगे, आप जानते हैं, बहुत दूर जंगल के अंत पर, वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ा है जिसके बारे में भाई नेविल गाते हैं। मुझे उस कोने का झोपड़ा बना, मैंने सोचा कि वह मेरे स्थान के बारे में बात कर रहे थे उस महिमा देश में। इन सुबह में से एक सुबह जब आप अपने बड़े द्वार के मंडल पर बाहर चलकर जाते हैं और इस तरह से चारों ओर देखते हैं, वहाँ दूर नीचे कोने में आप किसी को तो गाते हुए सुनते हैं, अद्भुत अनुग्रह कितना मधुर दिखाई देता है कि मेरे जैसे एक घृणित को बचा लिया। आप कहते हैं तो परमेश्वर धन्य है, बूढ़े भाई ब्रैनम ने इसे कर दिखाया। वहाँ है वो, मैं उसे अभी वहाँ पर खड़े होकर गाते हुए सुनता हूँ, अद्भुत अनुग्रह कितना मधुर दिखाई देता है। यह अद्भुत अनुग्रह होगा जिसने मुझे वहाँ पर लेकर आया, यह सही बात है। इसलिए मैं इसे प्रचार कर रहा हूँ।
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He taught that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar, these martyrs, crying how long for the Lord to punish those who've done wrong.
सुनना जल्दी से।
But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. Oh, there's going to
be. Oh, वहाँ होने जा रहा है।
Yea, I say unto thee, my people, As the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my words, saith the Lord.
Mahima.
I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amen. Amen.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
Glory.
I
Mahima.
Say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should
set
these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Man, he that has an ear,
Amen. वो जिसके पास कान है, वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. अब आराधना करें, देखो कि वह क्या करेगा. यदि आपने इससे पहले उससे कभी भी प्रेम नहीं किया है, क्या आप उससे अभी प्रेम करना चाहेंगे? क्या आप खड़े होकर और उसे पहचानेंगे, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में लेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे भाई. कोई तो और खड़ा होकर कहेगा, मैं उसे ठीक अभी चाहता हूँ, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ. परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे वहाँ पीछे नौजवान महिला. वो जिसके पास कान है, वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है.
Love.
हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे आप देख रहे हैं कि ये तीन जन उनके पैरों पर खड़े हुए हैं, हे परमेश्वर, मैं आपसे करुणाशील होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे एक अनंत, और उनके हर पाप के लिए क्षमा को देना और उद्धार को उनके जीवन में पवित्र आत्मा को, जिससे कि उन्हें दूसरी मृत्यु के द्वारा छुआ नहीं जाए। उन्हें एहसास हो, हे प्रभु, आज रात को जैसे वे वहाँ खड़े हुए हैं कि वहाँ कुछ तो उनके बगल में है। पवित्र आत्मा चेतावनी को दे चुका है लोगों के बीच, परमेश्वर की आत्मा को नीचे उतरते हुए देखने के लिए बस वचनों के अनुसार काम को होते हुए इसे देखें। केवल तीन संदेश और बंद करते हुए, हे परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संदेश। अब पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि करुणाशील होना, वो बहुमूल्य आत्मा हमारे बीच में रहे, हम इसके प्रति आदरपूर्ण रहे। परमेश्वर इसे प्रदान करे, इन प्राणों को आपकी हिरासत में लेना। पिता, वे आज रात उस संदेश के फल हैं और पवित्र आत्मा से उस संदेश के फल जो हमारे बीच बोला गया था, और हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के सारे दिनों में उनके साथ रहें और होने पाए उस दुनिया में जो बिना अंत के है, होने पाए हम उन्हें वहाँ पर मिलें और मसीह के लहू और अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। हम उन्हें अब आपको देते हैं पिता, उन्हें आपकी पवित्र आत्मा से भरें, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाइयों। कदापि जो उन लोगों के पास हैं जो खड़े हुए थे, मसीही लोग, उनके हाथों को मिलाएं जब वे बैठते हैं, उन्हें दें, उन्हें परमेश्वर की शीघ्रता की शुभकामना दें। देखो किस तरह से पवित्र आत्मा आज्ञाकारी है, किस तरह से इसे ठीक अंत पर करता है, समझे। बाइबल ने कहा वे उन्हें अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो करके बोले या नहीं, बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले। आप देखें, संदेश नहीं आया जिस समय पर मैं बोल रहा था, ये सब पूरा होने के बाद हुआ। यही है जिस तरह से ये होना चाहिए। हर कोई वास्तव में आदर पूर्व होकर और सुने कि आत्मा क्या कहता है। उसके बाद क्या हुआ, पापियों ने उठकर और पश्चाताप को किया। ओह, सोचे, पवित्र आत्मा खुद ही है, ऐसा नहीं, यहाँ तक कि वचन के जरिए से आकर और प्रकट बनाया। मैं इनमें से कुछ लोगों को जानता हूँ जो अन्य जुबान में बोलते हैं। मैं उन तीनों को जानता हूँ जिन्होंने बोला, और मैं उनको जानता हूँ जिन लोगों ने अनुवाद को किया। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के सामने उनका जीवन पाप रहित है। यहाँ भाई नेविल, हमारे पास्टर, एक मेथोडिस्ट सेवक, ये एक मेथोडिस्ट सेवक हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा को पाए हुए। जूनी यहाँ पर, भाई जैक्सन जो एक और मेथोडिस्ट प्रचारक हैं, पवित्र आत्मा को पाए हुए। यह सही है, अन्य भाषा बोलने और अनुवाद करने के एक दान के साथ। और आप ध्यान दें कि हमारे पास कैसी कलीसिया है, हर एक जन आदर पूर्वक परमेश्वर बोल रहा है। आप देखें कि वह बिल्कुल ठीक बाइबल के अनुसार किस तरह से बोलता है। एक संदेश तब संदेश के ऊपर नहीं आता है, वह इसे फिर से बोलता है, लेकिन वह उसके ऊपर तीन बार नहीं बोलता है। वहाँ वचनों के अनुसार देखें, देखो वह उस संदेश को देगा, वह इसे कभी भी उलझाता नहीं है, क्योंकि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के अधीन होती है। हर एक जन सुनता है और शांतिपूर्वक। अब इसी तरह से कलीसिया में व्यवस्था में होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बाहर के लोग हो सकते हैं, जो आपने मुझे इसे बोलते हुए सुना है, इसे इसी तरीके से होना चाहिए। देखो संदेश पहले आगे जाता है, परिणाम को देखा, ये ठीक उसके बाद होता है। कुछ तो बात जगह लेती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हृदय का जांचना या कोई और आत्मा। क्या वो अद्भुत नहीं है? ओह, मैं यह जानकर बहुत ही खुश हूँ कि यह वही बात है जो कि संत पौलुस के द्वारा ठहराई गई थी, ठीक यहाँ पर, जो ठीक यहाँ पर नहीं मरी है, अब भी वही बात है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप नहीं हो? तो ठीक है। अब कल रात को 7 बजे हम लौकिया के युग को ले रहे हैं, और यही वो विवाह का युग है। मैं चाहता हूँ कि यदि आपसे संभव हो सकता है तो आए। मुझे आज रात बस थोड़ी देर हो गई, क्योंकि शायद पवित्र आत्मा बोल रहा था और इत्यादि, लेकिन यह अभी तक जल्दी है। यह सिर्फ लगभग 9:20 ही हुए हैं, और ज्यादातर मैं यहाँ 10 या 11 बजे तक रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर वास्तव में जल्दी हुआ है। तो क्या आप प्रभु के उन संदेशों का आनंद ले रहे हैं? क्या आप सच में ले रहे हैं? यह आपके प्राण को खिला रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे बच्चों। आप जानते हैं मैं आपको पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ, और कभी कभी जब आत्मा मुझ पर पकड़ बनाए हुए होता है तो दोनों ओर काटता है, इसी तरीके से वचन काटता है। यह दोधारी तलवार की तरह तेज है, यह आते हुए जाते हुए अंदर से बाहर से हर तरह से काटता है, लेकिन यही है जो हमें खतना करता है। खतना केवल अतिरिक्त मास्क को काटता है, वो चीजें जो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, या आपने आत्मा को आज रात अनुवाद करने पर सुना, उस मूर्खता की बातों को बंद करो, वो खतना है। सच्चे बनो, हम सब रेखा से बाहर आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम में से उस गांठ को कैसे हटाएं। क्या वह नहीं करता है? वह निश्चित रूप से करता है। मैं इसके लिए आभारी हूँ। क्या आप नहीं हो? क्या छोटा पियानो वादक आप यहाँ पर हैं? मैं नहीं देखता हूँ। क्या टेडी है? मैं उसे यहाँ कहीं नहीं देखता। क्या यह है? तो ठीक है बहन, यदि आप चाहें तो। क्या यह आपकी बेटी है भाई डॉल्टन? बहू है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है छोटी महिला, बहुत ही खुशी है कि आप एक मसीही हैं। तो ठीक है, जो हमारा अच्छा पुराना समाप्ति का गीत, आओ हम इस एक गीत को गाने की कोशिश करें। बस अब इससे पहले हम करें, बस एक मिनट बहन, इससे पहले कि हम गाएं, यीशु का नाम आपके साथ ले लें। कितने लोग गीत को जानते हैं? परिवार की प्रार्थना को मत भूलना। कितने लोग आपके परिवार में प्रार्थना करते हैं? आपका परिवार प्रार्थना करता है? ओह ये अच्छा है, आइए इसे एक बार कोशिश करें, बिल्कुल बस पुराने समय की तरह। अब
डोंट फॉरगेट द फैमिली प्रेयर, जीसस वांट्स टू मीट यू देयर, ही विल टेक योर एवरी केयर, ओह डोंट फॉरगेट द फैमिली।
क्या आप इसे पसंद करते हैं? आइए इसे फिर से कोशिश करते हैं। आपके पास अब एक तारीख है।
Sure can, sister.
जरूर बहन बोल सकती हैं। बहन नेश, ये बहुत ही अच्छा है। ओह यदि आप बस,
इफ वी ट्रस्ट एंड नेवर डाउट, ही विल श्योरली ब्रिंग यू आउट, जस्ट टेक योर बर्डन टू द लॉर्ड, देन लीव देम देयर।
क्या आप उन पुराने स्तुति के गीतों को पसंद नहीं करते हैं? ओह मैं बस, मेरा विश्वास है कि उन पुरुषों ने कलम को उठाया और इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। उस अंधी फैनी क्रॉसबाय की तरह, जब उस दिन के उन सांसारिक लोगों ने कोशिश की कि उससे उन सांसारिक गीतों को लिखवाए, कहा इसके लिए तुम एक धनी स्त्री बन जाओगी, उसने कहा मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है और अपनी सारी विशेष योग्यता को, वह अंधी थी आप जानते होंगे, कहा मैं अपने जीवन के लिए एहसानमंद हूँ और पूरी तरह मसीह के लिए, उसने कहा। और फिर वे उस पर एक प्रकार से चिढ़ गए, क्योंकि उसने ऐसे अवसर को ठुकरा दिया था। उसने श्रीमान प्रेसली और उन लोगों की तरह अपने जन्मसिद्ध अधिकार को नहीं बेचा, लेकिन उसने अपनी सत्य निष्ठा को बनाए रखा। तो वह उन्होंने उसे छोड़ दिया, कहा फिर जब तुम स्वर्ग पर जाओ, यदि वहाँ इस तरह की एक जगह है तो, कहा यदि तुम वैसी ही रहती हो जैसी तुम यहाँ पर हो, तुम अंधी रहती हो, कहा क्या होगा यदि तुम अंधी रहती हो, कहा तुम उसे कैसे पहचानोगी, उसने कहा मैं उसे जान जाऊंगी, कहा क्या होगा यदि तुम अंधी रहती हो, क्या होगा यदि तुम अंधी रहती हो, वह बोली मैं कीलों के निशानों से महसूस कर लूंगी। फिर वह पीछे की ओर घूमी, वह वापस चलकर जाने लगी और उसने कहा
I shall know him. And redeemed by his side, I shall stand.
हे मेरे यीशु, उन पांच बहुमूल्य घाव के साथ उस ओर मेरे लिए लहू बह रहा है, मैं भला उस एक बहुमूल्य को कभी कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैं मर जाऊँ, मुझे मैं किसी भी तरह से जाऊँ, लेकिन मैं उस बहुमूल्य लहू लुहान का कभी भी इनकार न करूँ, वो एक जो उस ओर मेरे लिए मरा। जी हाँ, और जैसा कि आप आज रात छोड़कर जाते हैं, आप चाहते हैं यीशु के नाम को तुम अपने साथ लो, तो ठीक है बहन, क्या अब हम खड़े होंगे सब एक साथ मिलकर? अब जैसे हम अपने सिर को झुकाते हैं और धीरे से गाएं,